نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دار قرآن 2020 آج ہم اس میں پارہ نمبر 24 کریں گے 24 فمن ازلمو. پارے کا نام ہمیشہ ہی بہت اہم ہوتا ہے، پورے پارے میں اسی کی طرف بات جاتی ہے عام طور پہ. پس کون ہے زیادہ بڑا ظالم، یا اس سے بڑا ظالم کون ہے، وہ کون ہے، وہ آج کے ساتھ دیکھیں گے. لیکن یہاں بات ہے ظلم کی. انسان اپنے اوپر تو ظلم کرتا ہی ہے، انسانوں پہ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ظلم کرتا ہے. ایک بہت بڑا ظلم جو انسان اپنے اوپر کر دیتے ہیں، آج وہی ہمارے اس پارے کا مین تھیم ہے. تو فتنوں کے دور میں حل کیا ہے، اس سیریز میں سے آج کے اس پارے کا ٹاپک ہے ایمانی رشتے کی ناقدری کا فتنہ. نہ تو آپ نے کبھی لفظ ایمانی رشتہ سنا ہوگا، اور اس کی قدر کیا ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، لیکن یقیناً جاننے لگیں گے. اس پارے کو پڑھنے کے بعد آپ اور میں جس چیز کے قابل ہو جائیں گے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم علمی مجلسوں کے لیے لک فارورڈ کریں گے، کیونکہ یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ علم کے حلقے، قرآن کلاسز، یہ حلقات، جو بھی آپ اس کا نام رکھیے، اس جگہوں پہ جانے والے، بیٹھنے والے فرشتوں کی دعائیں پاتے ہیں. انشاءاللہ ہم سورت مومن کی آیت 7 اور اس سے آگے والی آیات میں اس کو دیکھیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان کا رشتہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ عرشیوں کو فرشیوں سے ملا دیتا ہے. سورت مومن اور سورت حامیم سجدہ کی آیات میں ہم دیکھیں گے، اور پورے پارے میں آج آپ کو فرشتوں کی دوستیاں محسوس ہوں گی کہ کیسے عرش والے فرشتے فرش پہ رہنے والے ان انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کی کوششوں میں بھی ہیں. اور اس بارے میں ہم ان فرشتوں سے بھی ملاقات کریں گے کہ جو صرف سارا دن ادھر ادھر گھوم پھر کر علم کے حلقوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور پھر یہاں سے کیا دیکھ کر جاتے ہیں، انشاءاللہ ایک حدیث قدسی کی روشنی میں دیکھیں گے. اور آپ کے میرے لیے پھر اس میں کیا ہے، وہ دوستیں، وہ ہمارے ساتھی جو ہمیں علم کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اسی پارے کی آیت ہے. اس سے بھی اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کے ساتھ جوڑے. تو آج انشاءاللہ ہم نے اپنی دوستیوں کے رنگ دیکھنے ہیں. مین چیز جو آپ کو پارے میں دکھتی جائے گی وہ اچھی دوستی اور بری دوستی کا فرق ہوگا. بعض دفعہ ہمیں اپنی وہ دوستیں اچھی نہیں لگتی جو ہمیں ایک بار نہیں بلکہ بار بار صرف اللہ کی بات سننے اور سنانے کے لیے بلائیں، اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں اب اس کو تو اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. لیکن ہم اس پارے کو پورا کرنے کے بعد یقیناً دیکھیں گے کہ دنیا کے سارے رشتوں سے پیارا رشتہ پھر ایک وقت آتا ہے، ایمان کا رشتہ بن جاتا ہے، اور جس نے ہدایت کی طرف بلایا وہ حقیقت میں آپ کو اپنے خون کے رشتوں کی طرح عزیز ہونے لگتا ہے. پارے کی مین تھیم آیت، آیت نمبر 25 ہے حامیم سجدہ کی. وَقَيَّتْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب جسماں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر جسماں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بار بار ہم ایمان کے رشتے اور ایمانی دوستوں اور اپنے ان مخلص ساتھیوں کی دعوت پہ کیوں کان نہیں دھرتے کہ جو بیچارے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اور اسی پیار اور محبت کے ساتھ کھانے پکا پکا کے انوائٹ کر کر کے ہمیں بلاتے ہیں، جیسے کبھی بچوں کی شادیوں میں بلائے، اور ہم کان نہیں دھرتے. اور آج اس بارے کو پڑھنے کے بعد اپنی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ جب کوئی دنیا کی دعوت آتی ہے تو اس وقت میرا رسپانس کیا ہوتا ہے، اور جب مجھے کوئی دین کے نام پہ دعوت دے تو رسپانس کیا ہوتا ہے. ایک ہی وقت، ایک ہی دن میں ایک شادی کا کارڈ دکھے اور ایک اچھی بات سننے سنانے کا انویٹیشن ملے، کوئی فلائر مل جائے، کوئی میسج مل جائے، اور ٹائم ایک ہو، میں کدھر جاتی ہوں؟ اور اگر وہ سب کچھ بھی اس میں بھی ہو جو کہ ہمیں کسی شادی بیاہ پارٹی میں ملے، کھانے پینے اور عزت اور پروٹوکول کے باوجود، اس کے باوجود بھی میں کدھر جاتی ہوں؟ یہ آیت آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کو لگایا ہوا ہے اور دوسری طرف ان کے ناقدرے لوگوں یعنی ناشکروں کو، جس کو آپ کفار کہیں یا منکر کہیں، ان پر کچھ شیاطین بھی مسلط کیے ہوئے ہیں جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک سیل کا سائن ایسا کہ ساری دوستیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کر کے خوشی منائیں اور ہم کہتے ہیں کتنا شکر ہے، مہربانی، آپ میری اچھی دوست ہیں، آپ نے مجھے بتا دیا، میں گئی اتنا سستا لے کر آئی، آپ کو پتہ 70% سیل تھی۔ آپ کو وہ دوستیں تو اتنی حسین لگیں کہ آپ ان کے لیے گرم گرم چائے کی آفر دے دیں، اور جب اس سیل سے بھی بڑی سیل کی دعوت کوئی دے دے، کیا ہو تو صحیح، اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا لو، تو اس وقت عموماً خاموشی، سرد مہری۔ چونکہ میرا اپنا تبلیغ سے تعلق ہے، مجھے اپنا یہ تعلق بڑا پیارا ہے، بہت سارے رشتے ہیں اس میں، مجھے اپنے لیے ایک لفظ مبلغہ اور معلمہ کہہ لیجیے اگر آپ چاہتے ہیں تو، مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ ساتھی بڑی محبت سے بلاتے ہیں دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں بھی، پھر ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ایک میسج آتا ہے، بس آپ آئیے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہوگا، یہ ہوگا، ادھر ادھر، اور خاص طور پہ وہ جو پیار سے اپنے گھر میں بلائے دوستوں کو، کیونکہ اس وقت موضوع وہی ہے، تو وہ بڑے جوش میں ہیں، 100 سے زیادہ آئیں گی، میری جگہ تنگ تو نہیں ہو جائے گی، میں باہر سے کیٹرنگ بھی کرا رہی ہوں، میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ میں ان کے جوش کو دیکھ کر زیر لب مسکراتی ہوں، بلیو می۔ اور جب واقعی ایک دن رہتا ہے تو ان کا ایک بڑا دکھ والا لٹکا ہوا چہرہ ہے اور فون آتا ہے، میری ساری دوستیں بار بار کوئی کچھ فون کر رہا ہے، مجھے یہ مجبوری، میرا یہ معاملہ، میرا یہ معاملہ، اور ان کا دل بجھتا ہے، میں نے تو اتنا کھانا آرڈر کیا ہوا ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، جن کے نصیب میں ہوگا کھائیں گے۔ اور پھر جب آپ وقت پہ وہاں پہنچیں تو وہ گھر والے کا چہرہ اترا، وانکھیں سوجی بھی، کل سے لے کر اب تک 20 لوگوں کے فون آ چکے ہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ یہ ہے آج کے پارے کا درد۔ دل چاہے تو سنیے، دل چاہے تو یہیں چھوڑ دیجیے، کوئی کسی کو نہیں منع کرے گا، لیکن یاد رکھیے گا، قیامت کے دن تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے اشارے ایسے شروع ہو جائیں گے ہمارے ساتھ کہ ہمیں وہاں اپنے وہ دوست اتنے یاد آئیں گے، کیونکہ وہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قرآن میں اب وہ حصہ شروع ہو رہا ہے، آگے تک آپ دیکھیں گے کہ کوئی کام نہیں آئے گا، دلی دوست ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے، لا یسلو حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، حمام ہم بخار کو کہتے ہیں، یعنی گرم جوش دوست بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ الخلا کا لفظ آئے گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ، خلیل کی جمع، یعنی قیامت کے دن صرف ایک دوستی کام آئے گی، اور الا المتقون۔ تو اس دنیا میں اگر ہمیں آج کی بات کو پورا سننے کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق ملے، پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے اوپر اس کو لیں گے کہ کیا میں اپنی دوستوں کے لیے دل میں درد رکھتی ہوں حقیقت میں۔ دیکھیے، یہ وہ درد ہے، جب تک آپ کے اندر سے یہ درد نہ اٹھے نا، تو سمجھ لیجیے ابھی آپ کی ہدایت خود بھی پوری نہیں۔ کئی سال سے ایک جملہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ 20 بار بول چکی، آج چلیے 21 بار آپ سب بھی لیجیے، دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اپنی ہدایت بھی پوری نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اٹس امپاسبل۔ انبیاء کی سیرت پڑھ لیجیے، اللہ کے نبی کی تڑپ کو دیکھ لیجیے، وہ راتوں کو ایک ایک آیت پہ رونا دیکھیے، وہ اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرنا دیکھیے، وہ قیام فی النہار اور قیام فی اللیل دیکھ لیجیے، قم فانذر پہ عمل دیکھ لیجیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ تو شاید خود کو ذبح ہی کر لیں گے، خود کو ہلکان کر لیں گے اس بات پہ، اس غم میں کیا غم تھا جو نبی کو رلاتا تھا کہ فاطمہ بڑی ہو رہی ہیں، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، جہیز کی چند چیزیں جمع کر لوں، بیٹا نہیں ہے، ہائے میرے بعد کیا ہوگا، یہ تو چھوٹے لوگوں کے غم ہیں۔ یاد رکھیے، چھوٹے لوگوں کے غم بھی چھوٹے، خوشیاں بھی چھوٹی، تھوڑی سی خوشی پہ اچھلنے کودنے لگ جاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے غم بھی بڑے اور ان کی خوشیوں کے انداز بھی بڑے۔ تو یہ پارا اس شعور کے ساتھ سنیے، مجھے تو لگتا ہے سارے پاروں میں سے دی بیسٹ ٹاپک آپ کو لگے گا اپنے لیے، دو چیزوں میں سے ایک۔ یقیناً آپ میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کئی سال سے اللہ کی کتاب کے قریب آ چکے، ہر سال کا دورہ قرآن، پھر سبیل الجنہ، پھر نور الا نور، پھر اس کے بعد آپ نے علم النافع بھی کیا، آپ تو تڑپ رہے ہیں، ابل رہے ہیں کہ کوئی مجھ سے خدمت لے لے۔ یہ جو آگ لگتی ہے نا اندر، میرے اندر ایک چیز آ رہی ہے، میرے آ رہی، وہ باہر نہیں نکلتی نا، تو بندہ یا تو خود جل جاتا ہے یا پھر دوسروں کو جلا دیتا ہے، کیوں کہا شاعر نے کہ دیکھا ہے جو میں نے وہ اوروں کو دکھلا دے، اور کسی اور نے یہ بھی کہا کہ میرا نورِ بصیرت عام کر دے. آپ چند لوگوں کے نام لیجئے جو دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے دکھے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, کوئی ان کی ڈگریاں نہیں دیکھتا, کوئی دل کھول کے نہیں دیکھتا, لیکن آپ کو ان کی بات سے لگے گا کہ یہ ان کی دکانداری نہیں ہے, یہ ان کی دینداری ہے. آج ایسے ایک کردار مرد مومن سے آپ اور میں ملنے والے ہیں. فَسَتَذْكُرُوا مَا أَقُولُ. کوئی بات نہیں لوگوں, آج تمہیں میری قدر نہیں ہے. میرا صبح اور شام تمہیں بلانا اللہ کے دین کی طرف تمہیں نہیں اچھا لگتا, لیکن یاد رکھنا, ایک دن یاد کرو گے. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اور میں تو اپنے سارے معاملے رب کے سپرد کرتا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں دوستیوں کے رنگ میں رنگا ہوا یہ پار. اس وقت بھی اگر آپ اپنی دوستوں کے لیے دعا کر لیں, اگر آپ ہدایت مند سے قدم آگے ہیں نا, تو دل میں عاجزی لاتے ہوئے, نرمی لاتے ہوئے, آنکھ میں آنسو لاتے ہوئے لجاجت کے ساتھ رب کو پکاریے, اللہ میری بات میں اثر ڈال دے, میں اپنے دل سے ایسے پیار اور محبت سے اپنی دوستوں کو دین کی طرف بلاؤں کہ وہ تڑپ کے آ جائیں, وہ تیری محبت میں نہ بھی آئیں وہ میری محبت میں آ جائیں. آج آپ کو آگے ایک حدیث سناؤں گی, وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ بات صرف آپ کے نام کے لیے آتی ہیں. ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا درس کا, لیکن وہ کہتی ہے اب کیا نہ کروں, بار بار تو کہتی ہے چلو آج چلی ہی جاتی ہوں, اور ویسے بھی آج تو دور دور تک کوئی کارڈ دکھ نہیں رہا, کہیں جانا نہیں, پارٹی نہیں اور شاپنگ بھی نہیں, چلو پھر آج چلتی ہوں اور کھانا بھی کھا لیں گے اور باتیں بھی, اور بعد میں گھنٹوں بیٹھوں گی شام رات سونے تک اس کو تنگ کرتی رہوں گی. دوست کو ملنے آتے ہیں, واللہ ہی اس محفل میں آ کر بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص بھی آئے گا, جب اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا انشاءاللہ. تو کیا پتہ چلا, صحبت صالح تر صالح کنت, نیک صحبت تجھے نیک اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو یہ اچھی صحبتوں کی ناقدریوں کا فتنہ بھی ہے. آج انسانوں کی ترجیحات بدل گئیں, اور جب امت مسلمہ کی بھی ترجیحات بدل گئیں تو پھر یہی ہوا. آج ہم علم دوست نہیں رہے, ہم کھانے کے دوست, پینے کے دوست, شاپنگ دوست, پارٹی دوست, ڈیزائنرز دوست. کبھی دوستوں کا دل بھرا کسی دوست سے, گھنٹوں بات کر لیجئے, ادھر آپ علم کی, دین کی, دعوت کی بات کر, اچھا اب میں چلتی ہوں, اچھا وہ بچوں کو بھی لینا ہے, اچھا اے مغرب ہو رہی نماز پڑھ, نہیں نہیں گھر جا کے پڑھوں گی, میرا وضو نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بون مسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. چند چیزیں دوستیوں کے ناطے سے اس بارے میں کہاں دیکھیں گے, آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے. بری دوستیوں کے فتنے کیسے ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے اس بارے کو پڑھنے کے دوران. سورت زمر آیت 33, نیک دوست کی صحبت ایمان کی دولت سے سرفراز کرتی ہے. سورت غافر آیت نمبر 7 اور حامیم سجدہ میں 31 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ مومنین اور دین پر استقامت رکھنے والوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی کرتے ہیں. سورت حامیم سجدہ 20 اور 22 دونوں میں دیکھیں گے کہ روزے قیامت عزا کی گواہی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہماری دنیا میں دوستی خرافات کی بجائے قرآن سے ہو. بعض دفعہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گیجٹ سے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں, کل قیامت کے دن وہ ساری چیزیں گواہ بن کر, ہمارے اعضاء بن کر ہماری گواہیاں دیں گے ہمارے خلاف. پھر سورت حامیم سجدہ 25 میں دیکھیں گے کہ برا دوست غلط استعمال کو خوش نما کر کے بتاتا ہے. عموماً دیکھیں دوستوں کی بات ہم مانتے بہت ہیں, تو جب وہ برائی کو خوبصورت کرے گا تو ہم برائی کو بھی اتنے ہی شوق سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی. پھر اسی طرح سے 44 اور 28 سورت غافر, مرد مومن سچا دوست اور خیر خواہ, یہ ہے وہ مرد مومن جس پہ ایک پوری سورت ہے مومن نام کی. اور آیت 53-57 زمر, بری دوستی رکھنے والے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں. ما فرطت فی جنب اللہ, یہ سورت زمر کے آخری رکوع میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بری دوستیوں سے بچائے, ہمیں اپنی دوستوں کے معاملے میں اچھی دوست بنا دے, ہم صرف چائے پانی پینے کے نام پر اس کی تعریفیں نہ کرتے رہیں, اور جو کام ہم خود نہ کر سکے اس کو دعاؤں سے لے لیجئے. تو اس پارے کے تھیم سے ملتی ہوئی دعا, جو آج سے آپ نے شعور کے ساتھ مانگنی شروع کرنی ہے اپنی دوستوں کے لیے. اور اگر آپ ابھی اس میں نہیں آئیں جس کا ابھی تک میں نے ذکر کیا, یعنی آپ بلانے والی نہیں ہیں, تو پھر ایک دفعہ اپنی کسی ایسی دوست کی بات پہ کان رکھیے گا جو بڑی محبت سے آپ کو بلاتی ہے, اور یہ دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی دوست کی قدر کی توفیق عطا فرما. دعا کیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلت السوء ومن لیلت السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. اے اللہ بے شک میں برے دن, بری رات, بری گھڑی, برے دوست और क्याम की जगह में बुरे हमसाए से तेरी पनाह मांगता हूँ। बहुत ही प्यारी रिवायत है, मौजल मल कबीर तबरानी की रिवायत नंबर 17 है। तो आप देखिए कि यहाँ आप किस चीज़ से पनाह मांगते हैं, साहिब सू, बुरा साथी। तो अल्लाह ताला आपको मुझे बुरी सोहबतों से बचाए। हदीस ले लीजिए इसके साथ, अबू दाऊद की रिवायत है 4832, ला तुसाहिबिल्ला मुमिनन वला याकुल तअमका इल्ला तकीयुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय मोमिन आदमी के किसी की सोहबत मत इख्तियार कर और तेरा खाना सिवाय परहेजगार के कोई ना खाए। ज़रा सा इस हदीस को लिख कर अपने ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम में लगा लीजिए, फिर अपने घर में आने वालों और उनके लिए लंबे लंबे दस्तरखान जो बिछते हैं उनका स्टेटस देखिएगा। नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं, और ख़ास तौर पे इफ्तारी के नाम पे 50 लोग आए और उनमें से शायद 10 ने नमाज पढ़ी। तो याद रखिए, हमारा खाना ज़ाया हो जाएगा अगर हमने खाना ऐसे लोगों को खिला दिया कि जो उससे कोई खैर ना लेकर गए। तो बुरी दोस्तियों से बचना है, और क्या करें, सबको छोड़ दें? नहीं, उनको अच्छा करना है। एक दुआ के साथ पारे का टेक्स्ट शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह, और वो क्या है कि अल्लाह मेरे ज़रिए मेरी दोस्तों को अच्छा बना दे और मुझे अपनी अच्छी दोस्तों के ज़रिए और अच्छा बना दे। हाइलाइट्स ऑफ दी पारा ले लीजिए, झलकियाँ, ताकि आपको पता तो चले कि आप क्या क्या लेने वाले हैं। सीधा रास्ता इख्तियार करना है, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। गौर व फिक्र करना है, तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह की इबादत करनी है और उससे डर कर रहना है, और रब के रास्ते की पैरवी करनी है। बड़ी मुश्किल है वैसे, लेकिन अच्छे दोस्त साथ मिल जाएं तो काम आसान हो जाता है। दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इसी को पुकारना है, अपने रब की पनाह लेनी है, अल्लाह को अपना रब बनाना है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बड़ी प्यारी आयतें इस पारे के अंदर आने वाली है। इस्तकामत फिर दीन के लिए अच्छी दोस्तियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। एक बिगड़ा हुआ दोस्त मिलता है, आप हिदायत के रास्ते पे चाहे भाग रहे थे ना, स्लो डाउन तो ज़रूर होंगे और फिर चलते चलते रुक के एग्ज़िट ले लेंगे। ये बात लिख के रख लीजिए। अगर आप आजकल थोड़ा सा दीन से दूर हैं तो सोचिए तो सही, डायरेक्ट तो कोई नहीं आपको कहेगा, लेकिन इनडायरेक्टली इंसान अपने दोस्तों से मुतासिर होता है। अलमरु अला दीनी खलील ही, अल्लाह के नबी ने फरमाया था आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। इसलिए ज़रा सोच समझ लिया करो कि किस को दोस्त बनाते हो, और जितना ज़्यादा हम अपनी दोस्तियों को और अपने दोस्तों को फिल्टर करते जाएंगे, इंशाल्लाह हमारा ईमान भी निखरता आएगा। फिर इसी तरह से रब की तरफ दावत देना सीखेंगे, मन अहसन कौल मिम्मन दा इलल्ला, और फिर इसी तरह किताब के सच्चे वारिस बनना है, अपने आप को रब कायनात के हवाले करना है और अल्लाह ताला के वादे को समझना है और अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर व फिक्र करना है, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होना है और उससे डर कर रहना है, आखिरत के हालात को जानना है और अल्लाह ताला को अपना इलाह बनाना है। अल्लाह ताला की दावत देनी भी है और ख़ुद भी नेक अमल करना है। अल्लाह ताला हमारे लिए इन सारे मामलात को आसान फरमाए। ये पारा सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 32 से शुरू होता है और टोटल आयतें इसमें 75 है। सूरह ज़ुमर 39 नंबर की सूरह है। शुरू करते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फ़मन अस्लम मिम्मन कज़ब अलल्लाहि वकज़ब बिस्सिद्क़ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ। इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब किसके पास आए तो इसे झूठा बताए? कैसे कुफ्फार के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं है? और जो सच्चे दीन को लाए और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग पारसा हैं। इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहें, नेक लोगों का यही बदला है। दो लफ्ज़ हैं पारे के आगाज़ में, एक है कज़ब अलल्लाह और एक है कज़ब बिस्सिद्क़। सच लेकर आने वाले कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सद्दक़ बिल हुस्ना आगे भी आएगा, सच मानने वाले कौन थे? मर्दों में सबसे पहले आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, और बाद में फिर हर वो अहले ईमान जो अल्लाह के नबी पर ईमान ला चुका और क़्यामत तक लाएगा। अल्लाह हमें अच्छे दोस्त दे दे। ज़रा सा सोचिए, अबू बकर सिद्दीक, अगर दोस्ती का ताल्लुक हो और फिर अबू बकर का नाम ना हो, बात नहीं बनती। डे वन से अल्लाह के नबी के राइट हैंड, और आज भी और क़यामत के दिन तक आपकी आखिरी सफ़र में आपके साथी। कोई मुकाम सीरत का खोल कर देखिए कि अल्लाह के नबी मौजूद हों और अबू बकर ना हो, ये नहीं हुआ। हत्ता के कहने वाले ने मोहब्बत में कहा या दलील में कहा कि जब मेराज के मौके पे अल्लाह के नबी साथ नहीं लेके जा सके अबू बकर को, کیونکہ وہ مقام ان کا نہیں تھا، تو اللہ نے وہاں ایک فرشتے کی شکل ابو بکر کی شکل میں ڈھال دی تاکہ وہاں صدیق کی کمی محسوس نہ ہو. اپنے اوپر لیجئے، کیا میں بھی آج دین کے نام پر اسی طرح کی صدیقہ ہوں؟ ہماری تو مجبوریوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی مجبور نہ ہوئے. آپ ان کا ہجرت کا سفر پڑھیں، ایسے تیار بیٹھے تھے اونٹنیاں رکھ کر، ان کو ببول کے چارے کھلا کر، اپنے غلام کو سب طرح سے ٹریننگ دے کر کہ جس وقت اللہ کے نبی آگے بس فوراً چل پڑیں گے. دو اونٹنیاں لے کے رکھی ہوئی تھیں، بیٹی کو پہلے سے جو گھر میں سامان تھا وہ سب بتا دیا تھا کیا کہاں ہے. ایسے لوگ صدیق ہوتے ہیں، ہمیشہ یاترے کے وقت پہ وہی ساتھ جائے گا جو پہلے سے تیار ہوگا، ورنہ تو بہانے ہی نہیں ختم ہوتے مجبوریاں. اور ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ دل کر رہا ہے لیکن مجبور ہے، سچ بتاؤ مجبور نہیں ہوتے. اگر تیاری کا ارادہ ہو تو اللہ کہتا ہے یہ پہلے سے تیاریاں کر کے رکھتے، یہ گھر والوں کے دل نرم کر کے بیٹھتے، یہ وقت سے پہلے کھانے پکا کے بیٹھتے، ان کو کہتے آپ بیٹھیے میں آئی. تو کون ہے ہم میں سے جو کہہ سکے کہ آج میں بھی صدیق کے مقام پر تصدیق کرنے والا ہوں؟ کوئی نیکی کا موقع میرے سامنے آئے اور میں اس وقت چل پڑوں، جو ہوگا دیکھی جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا، مائیں تو چلی بھی جاتی ہیں دنیا سے، بچے پھر بھی پل جاتے ہیں، کیا شوہروں کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے اور کیا گھر سارا دن سجاتے سنوارتے رہنا ہے؟ یاد رکھیے گا، جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کے بس نیکیوں کے اتنے مواقع ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تنگی داماں کا شکار ہوں گے. دعا بہار کی مانگی تو اتنے گل کھلے کہ میرے آشیانے کے لیے جگہ ہی نہ بچی اس دنیا میں. ایک وقت تھا آپ کی پرسنل لائف بالکل بلینڈ ہو کے اللہ کا دین آپ کی لائف بن چکا ہوتا ہے، پھر آپ کے گھر، پھر آپ کے گھر والے، پھر آپ کے بچے، پھر کپڑے، جوتے، کھانا پینا، یہی مجبوریاں ہیں نا جس کے سٹریس لے کے دنیا میں آج جی رہے ہیں، یہ سب دین کے معاونین بن جاتے ہیں. آپ اس درجے پہ اللہ کو سچے ہو کے تو دکھائیں، پھر دیکھیے اللہ آپ کو مقام صدیقیت پہ نہ پہنچائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ اور میں بھی صدیقیت کے مقام کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم میں یہی سب سے اوپر کا درجہ ہے. پھر کہیں شہادت ہے، پھر کہیں صالح ہونا ہے، تو آپ نے جب نیت ہی کی ہے بس صالح ہو گئے تو اللہ آپ کو صدیق نہیں بنائے گا. صدیق کا گول بنائیے اس سال رمضان میں، دیکھیے کہیں نہ ہوئے تو آخر صالحیت میں تو اٹک جائیں گے نا. سورۃ النساء کی آیت بول رہی ہوں، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. مجھے بیماری کیوں لگتی ہے اسی وقت جب نیکی کا موقع آتا ہے؟ میرے سر میں درد اس وقت ہی کیوں ہوتا ہے؟ میری کمر میں اسی وقت درد کیوں ہوتا ہے؟ میرے گھر میں اسی وقت مہمان کیوں آتے ہیں؟ یہ آزمائشیں، یہ ہرڈل ریس ہے، یہ دنیا اور اللہ کے راستے کی دعوتیں اور فرشتوں کی دعائیں لینا. آپ کی تو کمپنی بدل گئی، آپ کی تو فیملی بدل گئی، آپ ہیں دنیا میں انسانی رشتوں میں کھوئے ہوئے، وہاں تو عرشیوں کے ساتھ آپ کے تعلق جڑے، تو کیا اس کے لیے ایسے ایفس اینڈ بٹس پہ آپ کو اللہ لے لے؟ سارا کر کرا کے آدھے توڑے پھوڑے کام کر کے آپ پہنچے اللہ کے رستے میں، سب کو نپٹا سمٹا کر نکلے اور آدھے کو چھوڑ کے نکل جائیں کہ میرے کام پڑے؟ یہ تو پھر آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. مانگیے اللہ سے، جو مجبور ہوتا ہے اللہ اس کو مجبور کر دیتا ہے. تو پھر کیا مانگیے اللہ سے؟ صحیح راستہ مانگیے. دیکھیے پارے اب پورے ہو رہے ہیں نا، کل انگلیوں پہ گن کے آخری 30 پارے تک ایک ایک چیز کو آپ کے لیے سیٹ کیا اور اپنا محاسبہ کری تھی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن گناہ گار نہ بنانا، میں ان کا حق نہ مار جاؤں. کوئی ایسا فتنہ جس میں آج انسانیت اور خاص طور پہ امت مسلمہ ملوث، اور میں صرف اس وجہ سے نہ بولوں کہ یہ اور وہ، تو آپ تو شاید مجھے معاف کر دیں لیکن میں نہیں کروں گی خود کو. تو آج اللہ سے صحیح راستہ مانگیے، اور صحیح راستہ کے اچھی دوستی اور اچھی صحبت. کیا ملے گا؟ ایمان، عمل صالح میں استقامت کی توفیق ملے گی. ہم کبھی ایمان کی ایک چھوٹی سی ٹکڑے پہ راضی ہوتے ہیں، کچھ عمل ادھوری اطاعت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی بڑے جوش جذبے میں کرتے تو بہت کام ہے لیکن جمتے نہیں. ایک شادی کے آدھے ہمارے بچوں کی گھر میں ہمارا سارا ایمان رولے جاتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ غلط راستے بری دوستیوں اور بری صحبتوں کے راستے ہیں. ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتی ہیں بری دوست آپ کی، مانیے نہ مانیے، اور اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے. اور یقین کیجیے، آج ایک جملہ لکھ لیجیے، اللہ کو میری ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کے دین کو میری ضرورت نہیں، مجھے اللہ کے دین کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ نے آپ میں سے وہ خوش قسمت لوگ جو اس وقت بھی کسی پلیٹ فارم پہ دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، وہ تو سر نہ سجدوں سے اٹھائیں. کہاں تھا یہ کام اکیلے کرنے والا؟ اور پلیٹ فارم بنتے، خون جلتا ہے، پسینہ ایک ہو جاتا ہے، ہجرتوں اور قربانیوں کی داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہیں اللہ تعالیٰ ماتھے رگڑنے والوں کو، پسینے بہانے والوں کو پکڑتا ہے کہ آ جاؤ فرشتو، یہ سچے ہیں، پکڑ لو، ان کا ہاتھ تھام لو بس. اب یہ اکیلے تھے، لوگ ملتے گئے اور قافلے بنتے گئے، فرشتوں اب ان کو تھام لو، یہ آسان کام نہیں ہے، آپ میرے سے بہت اچھے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ان کے پاس پلیٹفارمس نہیں ہیں. تو یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان کا رشتہ اور اچھی صحبت، یہ پلیٹفارمس بھی ہیں. نون میں نقطے بن کر آپ صرف اپنی زندگی کے آخری دن تک نیکی کریں گے، اور اس کے بعد پھر لوگ آپ پر ایک فاتحہ کریں گے، کل کریں گے آپ کے، اور آپ کی برسی کریں گے، جمعراتیں کریں گے، اور ختم. اور اگر اولادوں کو نہ سمجھ دی تو نہ جانے اور کیا نہ ہو جائے. تو آج نیت کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی دوستیاں لینی ہیں، اچھی صحبتیں لینی ہیں. کیا فوائد ہیں؟ چند فوائد نوٹ کیجئے. اچھا دوست آئینے کی طرح ہوتا ہے، آپ کی خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ساتھ دیتا ہے، اور آپ کے لیے قربانیاں بھی کرتا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، آپ کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. اچھی دوستی فتنوں سے محفوظ کرنے میں معاون ہوتی ہے، اور دینی اور دنیاوی علوم سیکھنے میں مدد ملتی ہے. کتنی ضرورت ہے آپ کو مجھے اچھے دوستوں کی. اور یاد رکھیے، وہ شخص تہی دامن ہے، خالی ہے، جس کے پاس اچھے دوست نہ ہوں. اس کے برعکس برے دوست کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے، خود بھی قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں، غیر اللہ سے ڈرانے والے ہوتے ہیں. نانا نا، کبھی کسی دوست کا جملہ یاد کیجیے، نانا نا، سوچ لو، گھر چھوڑ دیا تو کدھر جاؤ گے، یہ کر لیا تو رشتے کیسے. وہ تو یہ جملہ بس آپ خود کوڈ ورڈ بنا لیجئے، غیر اللہ سے ڈرانے والے ہوتے ہیں دوست. لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، برادری کا ڈر، حکومتوں کا ڈر. اسی طرح باطل باتوں میں الجھاتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں برے دوست، وقت کا زیاں کرتے ہیں آپ کے میرے، قناعت اور تقویٰ کی کمی سکھاتے ہیں. کرو نا بات شوہر سے، یہ کدھر جاتے ہیں ویسے، یہ اپنے ماں باپ کو کیوں بھیجتے ہیں، ذرا لو اور گھر میں لڑائیاں کروا دیں گے آپ کی دوستیں. اس طرح خواہش پرست ہوتے ہیں برے دوست، اور تدبر اور تفکر سے محروم ہوتے ہیں. ایک جملہ بول دوں، بے عمل مسلمان ہوتا ہے بے برا دوست. تو جب آپ ان کے ساتھ صبح شام بیٹھیں گے تو کیا آپ کا وہ حال نہیں ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت 5534 دل کی تختی پہ لکھی ہے، ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک لیے ہوئے ہو اور بھٹی جھونکنے والا ہے. مشک والا یا تو تمہیں کچھ دے دے گا، یعنی خوشبو بیچنے والا خود سے کچھ تمہیں بھی دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا اس کی خوشبو تم سونگ لو گے، یعنی ہر صورت فائدہ ہی فائدہ ہے. ذرا عطر کی شیشی کھولے گا تو خوشبو تو آپ کو بھی آئے گی. اور بھٹی والا یعنی بلیک سمتھ، یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا تمہیں اس کی بدبو پہنچے گی، یعنی ہر صورت میں نقصان ہی نقصان ہے. آپ یہ سب سوچ کر دعا کر کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ ہماری دوستیوں کے قبلے بدل دے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ تھا فرمائے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہائی لائٹ کریں، علیہ اللہ بِكَافٍ عَبْدًا، یہ عبد کے نیچے اپنا نام لکھیے، اور پوچھیے اسے، کیا مجھے اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر میں کیوں دوسروں کے پاس جاؤں؟ پھر میں کیوں دوسروں سے مانگوں؟ پھر میں دوسروں کے در پہ کیوں ماتھا ٹیکوں؟ پھر میں دوسروں سے امیدیں کیوں رکھوں؟ میں دوسروں کا خوف کیوں رکھوں؟ اور یاد رکھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، پھر حسبن اللہ ونعم الوکیل. کہاں پڑھ کے آئے آپ؟ سورہ آل عمران میں آپ نے حسبن اللہ پڑھا، پھر آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا، پھر آپ نے حمرہ الاسد کے موقع پہ اللہ کے نبی اور ساتھیوں کا پڑھا. ابراہیم نے آگ میں ڈالتے ہوئے یہی جملے بولے، اللہ کے نبی اور ساتھیوں نے دشمنوں کے ایک بہت بڑے لشکر کی خبر سن کر یہی بولے. تو یاد رکھیے، یہ جملہ دو جگہ بولا جاتا ہے، ایک کسی نقصان سے بچنے کے لیے، اور دوسرا کسی نفع کو لینے کے لیے. آج آپ اور میں بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ حسبن اللہ ونعم الوکیل، آپ مجھے کافی ہو جائیں اور مجھے اچھی صحبتیں عطا فرمائیں. یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ تو ہماری ہدایت ہمارے دوستوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. بے ہدایتوں میں رہیں گے تو تھوڑی بہت جو ہدایت تھی وہ بھی چلی جائے گی، اور کسی ایک ہدایت والے کے آپ کے سرکل میں آنے سے باقی سب بھی سیدھے ہونے لگتے ہیں. تو آئیے دیکھیے کہ اچھے دوستوں کی پھر کیا پہچان ہے. باعمل مسلمان ہوتے ہیں، قرآن اور سنت سے محبت کرتے ہیں، فرقہ پرستی سے بہت دور ہوتے ہیں، حق گو ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں، قناعت و تقوی اور استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، آخرت کو مقدم اور دنیا کو مؤخر رکھتے ہیں، یعنی ان کی پرائیورٹیز دنیا نہیں آخرت ہوتی ہیں، تدبر اور تفکر کے عادی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اپنے دوستوں کے لیے اچھا دوست اور ہمارے دوستوں کو ہمارے لیے اچھی دوستیں بنا دے. اور یہ جو جملہ ہے نا، علیہ صلی اللہ بکاف نبدا، اس سے ہٹنے سے آج دور حاضر میں کتنے فتنے آئے نوٹ کیجئے گا. نمبر ایک، شرک فی دعا شروع ہو گیا. اگلی سورج جو آ رہی ہے نا مومن، اس کا مین تھیم اگر الگ سے کر کے دیکھیں نا تو شرک فی دعا ہے. جب اللہ کو کافی نہیں سمجھتے تو پھر دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر اسی سے اللہ کی بجائے لوگوں کا ڈر آنے لگتا. کل بتوں سے ڈرتے تھے، آج بزرگان دین کی قبروں سے ڈرتے ہیں. ہم سے مطلوب کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور توکل کریں. اللہ سے کوئی دور رہ کیسے سکتا ہے؟ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. آپ ان سے کہیے، اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے. توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. تو حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، دوبارہ وہی مضمون آ گیا، مجھے اللہ کافی ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. تو کیا کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرنے والے؟ پہلی بات یہ کہ دوستوں کی درد مندی سے اصلاح کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، غیر اللہ کے زوف کے دلائل دیتے ہیں کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے، زوف کہتے ہیں کمزوری کو. پھر اس طرح دوست نہ مانے تو ان کا نقصان، آپ غم نہ کریں، اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرتے ان دوستوں کے غم میں کہ جو ان کی دعوت پہ کان نہیں دھرتے. اور آپ اللہ پر توکل کریں اور اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کرتے رہیے. کہہ دیجئے کہ میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. ابھی ابھی تم بھی جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب کی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرما دی، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے نفع کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. کوشش تو کرتے رہیں، کنوے تو کرتے رہیں، کنونس نہیں کر سکتے. آپ ان کی خوشی کے لیے اللہ کے پیغام کو بدل نہیں سکتے. یہ اپنی مرضی کریں، آپ اللہ کی مرضی کرتے جائیں. بس اب ہم اپنی دوستیوں کے آئینے میں خود کو اس طرح سے مس فٹ فیل کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بدلنے لگتے ہیں. تو یہ آیتیں آپ کو مجھے پیغام دے رہی ہیں کہ بس ایک خاص حد تک غم کیجئے، اس کے بعد اپنی فکر کیجئے. اور اللہ کی ضرورت کیوں نہ ہو ہمیں، کیونکہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی ابھی تک موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر وہ جن پر موت کا حکم لگ چکا انہیں تو روک لیتا اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ہماری نیند موت کی بہن ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں. تو ہمارے اندر دو قسم کی روحیں ہوتی ہیں، ایک ہے حیوانی روح، موت یعنی وفات کبریٰ کے وقت جسم سے نکل جاتی ہے. یہ روح اگر ایک دفعہ نکل گئی تو واپس نہیں آ سکتی، یعنی اس کا روٹ ون وے ہے. اس کے برعکس ایک اور روح ہے ہمارے اندر جس کو نفسانی روح کہا جاتا ہے. یہ نیند یعنی وفات صغرا کی حالت میں بدن سے نکلتی ہے اور بیدار ہونے پہ آ جاتی ہے. تو نیند آدھی موت ہے. تو گویا کہ آپ اور میں روز ایک موت کے بعد جاگتے ہیں. تبھی تو ہم کیا کہتے ہیں رات سونے کی دعائیں، اللہم بسم کا موت واحیا اور الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، بیدار ہوتے ہوئے زبان پہ. تو کیا پتہ کسی دن اس بستر پہ لیٹیں اور پھر اٹھیں نہ، آنکھ کھلے تو قبر میں کھلے. تو اس لیے اپنی نیند کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیے، سنت طریقے سے سوئیے، وقت پہ سوئیے، سارے اذکار پڑھ کے سوئیے. اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق سونے والوں کا تو سونا بھی عبادت اور جاگنا بھی عبادت. اور اسی طرح سونے سے پہلے دل صاف کر کے سوئیں. کوئی پتہ نہیں، نہ اٹھ سکے تو کہیں کسی کا بوجھ اور قرض نہ ہو، اپنے سارے معاملات سیدھے کر کے صاف ستھرے کر کے سوئیں. بعض خواتین گھر رات کو صاف کر کے سوتی ہیں کہ پتہ نہیں کل اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے اور تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے پاس ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ چیز دیکھیں گے، جو شخصیت پرستی کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں نا، پچھلے پارے کا تھیم، تو وہ ہمیشہ ایسی باتوں پہ خوش ہوں گے، جھومیں گے، گھومیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوئے حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بزرگوں کی، ان کے بتوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جہاں آپ اللہ کی بات کریں بور ہونے لگتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، سونے لگتے ہیں۔ آج درس میں لوگوں کا یہی انداز ہے، کہتے نہیں 2-2.5 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی ہیں عورتیں، سپارے دے دیجئے وہ پڑھ دیں گی، اور کوئی نعتیں قوالیاں لگا دیجئے وہ کر لیں گے۔ آج دیکھ لیجئے چینلز پہ دین کے نام پہ کیا ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو لوگوں کو اللہ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا، اسی لیے یاد رکھیے آیت 45 میں کیا دکھا، ذکر اللہ، اکیلے اللہ کا ذکر ہونے پر برے لوگوں کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، کہتے ہیں صرف اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت ہی پرانی بات ہے، کسی نے مجھے کہا کہ انہوں نے دعوت دی ہوگی لوگوں کو کہ آئیے اس کلاس میں، تو میرا تذکرہ ہوا، تو کہنے لگی وہ جو بوڑھی سی آنٹی تھی سیدھی سادھی، کہنے گی نانا میں نے نہیں ان کے پاس جانا، کیوں؟ کہتی وہ صرف اللہ کی باتیں کرتی ہیں۔ ہیں تو اور کس کی کروں؟ مطلب ان کا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے یہ لوگ؟ اللہ جانے، دیکھے کوئی صفحہ نہیں قرآن کا جس میں اللہ کا نبی کا ذکر نہ ہو۔ میرے پاس جب بات پہنچی، میں نے کہا اماں جی سے کہ یہ گواہی لکھ کر دے دیں، قیامت کے دن میرے بارے میں یہ ضرور کہیے گا کہ میں صرف اللہ کی باتیں کرتی تھی۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ میدان حشر میں بندہ خدا سے کہہ دے کہ سارا جہاں خفا مجھ سے تیرے لیے، ہو جائیں سارے ناراض تو ہوتے رہیں، اور اللہ کے نبی کو آپ الگ کر کے دین سمجھیں گے کیسے؟ یہ شوشے ہوتے ہیں، جبکہ غیر اللہ کا ذکر ہونے پر دل کھلنے لگتے ہیں۔ تو استقامت فی الدین کے راستے میں بظاہر خیر خواہ نظر آنے والے دوستوں کی پہچان اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ دعا کیجئے ہم دوستیوں کے نام پہ بھٹک نہ جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ لچ رہے تھے۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی نہ تھا۔ ان ایکسپیکٹڈ میٹرز ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، ان کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ اور انسان کی تھوڑ دلی، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ نوٹ کیجئے 49 کا آخری لفظ، اکثر کے پاس علم نہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون۔ پوچھیے اپنی دوستوں میں خود کو رکھ کر کہ آپ کی دوستوں میں کتنوں کے پاس علم ہے، اور علم وہی العلم جس کو القرآن و سنہ کہیں گے، باقی تو بچپن سے ماشاء اللہ علم لینے دینے والوں میں سے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ لا علمی کو علم میں بدل دے۔ قد قالہ الذین من قبلہم، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی ہوئی تمام برائیاں ان پر آن پڑی، اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، یہ میں ہرا دینے والے نہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ میری جانب سے کہہ دو، اب یہاں سے دیکھیے سورت زمر کا تتمہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ تقریباً 2 رکوع تک بعد چلے گی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندو، اور آپ پیچھے نوٹ کر چکے ہیں کہ یا عبادی کا لفظ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 2 مختلف رویوں کے ساتھ پکارتے ہیں، یا تو بہت پیار آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہاں آپ کو ڈیٹیلز دی تھی دوسرے پارے میں، یا پھر جب اللہ کو بندوں پہ بڑا غصہ آتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میرے بندوں، اپنے ساتھ نسبت، اضافت برائے تشریف۔ آپ ذرا سنیے کن کو کہا جا رہا ہے، نبیوں کو، پیغمبروں کو، تہجد گزاروں کو، ولیوں کو؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بال یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یہ ہے جی وہ انداز جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں اختیار کیا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے بہت خوشی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں امید دلائی ہے عبادی کہہ کے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیار بھی دکھ رہا ہے اور ناراضگی بھی دکھ رہی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہوں کے بیگیج اٹھا اٹھا کر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا یہیں ہاتھ ہلکے کر دو، ادھر پھینک دو گناہوں کے پلڑوں کو، ہلکے پھلکے ہاتھ سے بھاگ بھاگ کر اللہ کی طرف جاؤ۔ زندگی میں بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، کبیرہ گناہ تک کر چکے، شرک اور بدعت کی کباختوں کا شکار ہو چکے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان قرآن سنتا ہے نا تو اس کو ہر حکم سن کر لگتا ہے کہ یہ میرے میں بھی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی ڈاکٹر کی دکان پہ جائیں اور بڑے بڑے چارٹس لکھے ہو نا، کینسر پیشنٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مائیگرین کا یہ ہے وہ ہے، ہر چارٹ پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے مجھے یہ بیماری ہے۔ بالکل قرآن پڑھتے ہوئے شروع میں خاص طور پہ بڑا بندے کو مشکل لگتا ہے، جیسے پہلو بدلتا ہے، بندہ کہتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہ لے، میں کسی کو بتاؤں بھی نہ بھی، میں سیکھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، کیونکہ چوٹ اپنے اوپر پڑتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے غم کی بات نہیں، اگر آپ فرسٹ ٹائم قرآن سن رہے ہیں اور ہر گناہ آپ کو اپنے اندر دکھ رہا ہے اور ہر نیکی سے آپ محروم ہیں، ڈونٹ وری، یہ آیت آپ کے لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے برعکس ہوتا کیا، جب ہم برے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے کچھ برے رویے سیکھتے ہیں، کیا مثلا اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنا سکھاتے ہیں۔ اللہ کا حق ہے کہ دن میں کم از کم 5 نمازیں پڑھی جائیں، اس کو ایک ماننے کے دعوے کے بعد اس کے رسول کو ویسے ہی مانا جائے جیسے ماننا، دین کو سنتوں کے رنگ میں لیا جائے بدعت میں نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، چھوڑو چھوڑو، نہیں نہیں نماز نہیں نہیں بعد میں پڑھیں گے، نہیں پھر میں نے جانا ہے، پلیز ابھی چلتے ہیں، اچھا نماز کا وقت ہو رہا ہے ابھی ذرا پڑھ کے نکلتے ہیں، نہیں نہیں پھر میرے بچوں کا ٹائم ہے، نہیں ابھی بازار جاتے، آ کے پڑھ لیں گے نا۔ یہ ہے برے دوست، اللہ کے حق میں کوتاہیاں سکھاتے ہیں۔ فلم دیکھی وہ، سنا وہ فلاں کا نام فلاں، بڑی پیاری فلم آئی ہے، تو کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کا مذاق سکھاتے ہیں۔ یہ کیا بن گئی ہو، یہ کیا اتنا کھینچ کے اسکارف لے لیا، پتہ کیا لگ رہی ہو، اتارو اس کو، ماسی لگ رہی ہو، بڑھیا لگ رہی ہو، اماں لگ رہی ہو، یہ سکھاتے ہیں برے دوست، آپ کے آنسو ہی نہ پوچھے وہ، اور اسی طرح ہدایت نہ ملنے کا الزام اللہ کو دیتے ہیں۔ ہاں اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دینی ہوگی تو مل جائے گی نا، یہ ٹون ہوتی ہے، اور غرور اور تکبر کا رویہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے بری دوستیوں کو اچھی دوستیوں میں بدل لیجئے، چھوڑ کر نہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر، تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے انسان آگے آئے گا۔ مزید کچھ چیزیں، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا، ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا، اور تو تو تھا ہی کافروں میں سے۔ تو کیا پتہ چلا ہم سے مطلوب کیا ہے، کہ بری دوستیوں اور بری صحبتوں کو چھوڑیے، کیونکہ یہ اپنی جانوں پہ ظلم سکھاتی ہیں، اللہ کے حق میں کمی ہوتی ہے اس سے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر یہ دوستیاں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتی ہیں، تو ہم نے مایوس نہیں ہونا، توبہ کرنی ہے، حکم ماننا ہے، اور عمل احسن طریقے پہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی دور گزرا ہو کہ آپ کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے ہوں، بازو تو ویسے ہی کٹ گئے، ٹخنے تو کھل گئے، کوئی بات نہیں، دوپٹہ بھی نہیں تھا، آپ دوپٹہ لینا شروع ہو گئیں، ایسا ایسا لگا یہ کہ نٹ کا شفون کا پتلا سا دوپٹہ اور چائنا سل کا دوپٹہ ہوا چلے تو میری گود میں آ جائے، آپ نے اس کو موٹے دوپٹے میں بدلا، بدلتے بدلتے آہستہ آہستہ ہلکے سے ہلکا اچھے سے آ گئی، یہ ہے بھی احسنی منہا، بہتر سے بہترین پہ چلیے۔ آپ بیئر منیمم پہ تھے، آپ تھوڑے سے آگے آ جائیے، حسن ہو گیا، بحسن کرتے جائیں، ایک دن آئے گا آپ اللہ کے پیارے بن چکے ہوں گے، بلاوڈ آف اللہ میں آ چکے ہوں گے، آپ کی چوائس اللہ تعالیٰ کی چوائس سے بالکل ملنے لگ جائے گی، بس اس پہ چلتے جائیے، پھر کسی کو نہ دیکھیں نہ کسی کو سنیں۔ اور یاد رکھیے کہ سلیبس کو جانے بغیر امتحان میں کامیابی کا تصور بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سلیبس کیا ہے؟ یہ قرآن, یہ سنت, یہ حدیث پڑھنا پڑے گا. یہ مینول ہے, یہ لائف سٹائل سکھاتا ہے زندگی گزارنے کا. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کی میری امیدیں اللہ سے لگ جاتی ہیں نا, تو ہم اس کی بات مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے امید ہوتی ہے انسان اسی کی اطاعت بھی کرتا ہے. بچہ بھی تو ماں کی بات کیوں مانتا ہے کہ اس کو پتہ کینڈی ملنی ہے. تھوڑی سی کوشش کیجیے, اللہ آپ کو ہمت دیتا جائے گا, آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہ جو بات ہے نا کہ ماں فررت فی جنب اللہ, یہ تو آج ہمارے اندر عام ہے. ہم اللہ کے حق بندوں کو دے دیتے ہیں. اب جب اللہ کی طرف آتے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے حق واپس لیتے ہیں. کچھ ہم نے شوہر کو مجازی خدا سمجھ کے دیے ہوتے ہیں, کچھ ہم نے دوستوں کو دیے ہوتے ہیں, کچھ صلہ رحمی اور حقوق العباد کے نام پہ دیتے ہیں. بس ایک ایک حق واپس لیتے ہیں, اس میں ذرا سا لوگ چونچا کرتے ہیں. فکر نہ کیجیے, آپ ایک ایک کر کے اللہ کے حق, نماز, روزہ اور اسی طرح باقی چیزوں میں اس کو واپس کیجیے. نہ بچوں کے لیے نمازیں چھوڑنی, نہ دوستوں کے لیے چھوڑنی, نہ شوہروں کو خوش کرنے کے لیے بے حجاب ہونا. آپ دیکھیے گا کہ 24 گھنٹے, پورے ہفتے کے 7 دن آپ اللہ تعالیٰ کے حق کو دینے والے بنیں گے. اور جو 24 گھنٹے, 7 دن, ہفتے کے نعمتوں کی قدر کرتا رہتا ہے, بالآخر وہ 24/7 عبادت کی حالت میں رہ جاتا ہے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب آپ دوسری طرف آتے ہیں تو وہ چیزیں تو انسان کو پھر اپنی نظروں میں بھی شرمندہ کرتے ہیں. اچھے دوستوں اور برے دوستوں کا ہماری زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھے دوست کے بارے میں فرماتے ہیں, کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو, اس لیے کہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جب تم ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کی صحبت کی برکت سے تمہارے دل بھی نرم ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اچھی صحبتیں عطا فرما, اور جو دی ہوئی ہیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما, اور استقامت دے, ڈھیلے ڈھالے نہیں, بھاگنے والے بن جائیں ہم ان دوستوں کی معیت میں. اس کے برعکس برے دوست کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں کہ برے دوست کی سنگت اور صحبت انسان کے لیے سانپ اور شیطان سے زیادہ خطرناک ہے, یعنی اس سے زیادہ نقصان دہ. اس لیے کہ شیطان صرف انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ایک بدکار دوست انسان کو برائی کرنے پہ مجبور کرتا ہے. جی, خدا نخواستہ اگر آپ کسی برائی کا شکار ہو چکے ہیں تو یاد کیجئے, پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو کوئی دوستی ہی ملے گی پیچھے سے. تو بری دوستی اور اچھی صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دینی بگاڑ پیدا ہوتا ہے خراب دوستوں کی وجہ سے. شرک, بدعت اور اسلامی شاعر یعنی ریچولز آف اسلام کا مذاق تک اڑانے جیسی خرابیاں انسان پہ آتی ہیں. اس طرح انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. پھر اسی طرح دینی بگاڑ کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے. گھنٹوں بیٹھ کے باتیں ہوں گی, اللہ کا ذکر نہیں ہوگا, باقی سارے خاندان کا ذکر ہم کر دیتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کر. پھر اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ مسجدوں کی بجائے کہیں اور پائے جاتے ہیں. ہم سینما میں کس کے ساتھ جاتے ہیں, ہمیں نائٹ کلبس, اللہ نہ کرے کوئی لے جائے, اگر کبھی کوئی کسی نے مستی میں آ کے کہہ دیا تو وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے دوستوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں. یاد رکھیے, یہ سب معاف اور رت فی جنب اللہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے, دنیاوی طور پہ بھی دیکھے تو ہماری تعلیمی بگاڑ کی وجہ دوستیاں ہوتی ہیں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور بیٹھ کر دوستوں سے ہی پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح بعض بچے آوارگی تک پہنچ جاتے ہیں, وقت کا زیاں کرتے ہیں. بری دوستی اور صحبت کے برے اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ اخلاقی بگاڑ آتا ہے. اپنے بچوں کی دوستیوں کو بھی ذہن میں لے آئیے, یعنی بعض دفعہ ہم اپنی دوستوں میں بیٹھ کر اخلاقی طور پہ یرغمال ہو جاتے ہیں, کڈنیپڈ. مثلاً غیبت کرنے لگتے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. پھر اسی طرح بعض بچوں کو بری دوستیوں میں نشے کی عادت پڑ جاتی ہے, چوری چکاری اور غلط عادات کا شکار ہوتے ہیں, اور کئی جرائم اور بری شہرت اور بدنامی تک پہنچ جاتے ہیں. ڈرگز آنے لگتی ہیں گھروں میں, شراب چلتی ہے, برے دوست ہوتے ہیں پیچھے. اسی طرح تعلقات میں بگاڑ کے آتا ہے ہمارا, گھر والوں سے جھگڑے, بد کلامی, کیونکہ گھر والے پھر اچھے نہیں لگتے. یہ بھی نوٹ کریں, بری دوستیوں کا ایک نقصان یہ کہ آپ کو اپنے گھر والے اچھے نہیں لگتے, کیونکہ وہ تو بیچارے مخلصین ہیں, انہوں نے تو آپ کو کبھی نہیں بگڑنے والی بات کہنی, بلکہ وہ اصلاح کی کوشش کریں گے. تو بعض بچے اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں, اور آج کے ایسے ماحول جہاں ماں باپ سے بھی زیادہ محبت دکھانے والے لوگ ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, بس ذرا 18th کا ہونے دیجئے مجھے. اسی طرح پھر تعلقات میں جب بگاڑ آتا ہے تو گھروں سے رحمت اٹھتی ہے, جھگڑے, لڑائیاں, ایک اصل بندی رہتی ہے گھر میں. آدھا آدھا دن سوتے رہ جائیں گے تو اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر اس طرح فتنے اور فساد ہوتے ہیں, تو ہر ممکن طریقے سے ہم نے اپنی دوستیوں کے قبلے بدلنے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظروں میں بڑے بن سکے, پیارے بن سکے. اور اسی طرح سے پھر فرمایا, آگے دیکھیے گا آیت نمبر 60, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزکاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرے۔ سیاہ چہرے والوں سے کون مراد ہے؟ تفرقہ ڈالنے والے، اختلافات کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور حسرت ہوگی کاش لوٹایا جاؤں تاکہ نیک بن جاؤں۔ اس کے برعکس سے روشن چہرے، گورے چہرے، سفید چہرے، وہ کون ہیں؟ اللہ اور رسول کے دوست، خوبصورت نورانی شکلوں والے بنیں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، کیز آف دی ہیونز۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے کو کہتے ہو؟ یہ جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل کہتے ہیں جذباتی شخص کو، جس کو غصے میں اپنے اوپر قابو نہ رہے، معاملہ فہم نہ ہو، غلط چیزوں پہ پہنچ جائے۔ آپ دیکھیے کہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے انسانوں کا ڈر ڈال دے، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے جاہلو، تم کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور بال یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور شکر کرنے والوں میں ہو جائیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، سورت حج کی آخری آیتوں میں آپ نے پڑھا، اب یہاں بھی آ گیا۔ اللہ کی حق نہ کرنے والے ہی اصل میں ناقدر ہیں۔ تبھی تو ایسے دوستوں کی قدر نہیں ہم کرتے جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ شرک اور نافرمانی کی وجہ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ۔ اللہ کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ پہلی بات ہے کہ اس کے ناموں پہ غور کیجیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ پھر قرآن پاک سے گہرا تعلق قائم کیجیے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کیجیے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب قیامت کا منظر ہے، یہاں سے بالکل سورت کا وہ منظر ہے کہ جس میں لفظ زمر بھی آئے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنے دوستوں کے مجموعوں میں، یعنی زمر کہتے ہیں ٹروپس کو، گروہ، قیامت کے دن لوگ لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ جی، جیسے دنیا کا سورج نکلتا ہے ہر چیز روز روشن کی طرح دکھنے لگتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کا نور جب میدان محشر میں نظر آئے گا تو لوگوں کی اصل دکھنے لگے گی، دل کے ارادے، نیتیں، کھوٹ کپٹ سب کچھ کھل جائے گا۔ نام اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو میدان محشر میں لے جائیں آیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دیا جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ پورا پورا بدلہ، پوری پوری جزا یا سزا، کیا قیامت کا دن ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر کے کتنے موقع زندگی میں دیے آپ نے ضائع کیا، اللہ نے کتنی تکلیفیں دیں تاکہ صبر کرتے ہم نے وہ ضائع کر دیا، ہم نے لوگوں کے خوف پالے ہوئے تھے حالانکہ حق یہ تھا کہ اللہ کا خوف پالتے، لوگوں کا دل نہ ٹوٹے اس وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے رہے، اللہ کو چھوڑ کے پیچھے چل پڑے، ایک سے ایک کرتے ہوئے بالآخر کائنات پوری ختم ہوگی۔ کل من، سب، ایک ایک کر کے ایک ایک مخلوق ختم کی جائے گی، سارے انسان، سارے جن، سارے پرندے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ صرف جبرائیل، اسرافیل اور اسرائیل رہ جائیں گے۔ پوچھا جائے گا سناؤ کون رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس اسرافیل اور اسرائیل اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو حکم دے گا، جبرائیل کی بھی جان لو، اسرائیل ان کی جان لیں گے، پھر اسرافیل کی جان لی جائے گی ایک سور پھونکنے کے بعد، پھر اسرائیل کو کہا جائے گا باپ اپنی جان لیجیے، کل من، سب ختم، بجھ گئے سب، پھر اللہ اپنی قدرت سے اسرافیل کو دوبارہ زندہ کریں گے اور حکم دیں گے کہ دوسرا سور پھونک دو. صرف ایک ہستی باقی رہے گی, کلو من علیہا فان, اور اسی کی انسان قدر نہ کرے. وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی, اپنے حساب سے تو ساری کرتے ہیں تھوڑی بہت. تو یاد رکھیے, بری دوستیاں اللہ کی معرفت سے دور کر دیتی ہیں, لا علمی میں لے آتی ہیں, بری صحبت قیامت کے دن کی ہولناکی سے لا علم کرتی. کہتے چھوڑو چھوڑو سو کے, نہیں نہیں ایسی باتیں نہ کیا کرو, انکس ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, سٹریس ہوتا ہے مجھے. اور ایسی دوستیاں پھر لہو لائب میں مشغول کرتی ہیں, نام اعمال کے ملنے کی بے یقینی ڈال دیتے ہیں. کہتے لاؤ کو اچھی سی فلم دیکھتے ہیں, تھک گئے ہیں, پریشان ہو گئے. تو آئیے دیکھیے, اب دو لوگ ہیں, دو کردار, دو طرح کے راستے, ایک جہنم والے اور ایک جنت والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی دوستیوں کے ساتھ اچھے لوگوں میں شامل کر دے, ہم کہیں قیامت کے دن رسوا نہ ہو جائیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے, اور وہاں کے نگہبان یعنی چوکی دار, سیکورٹی مین, گارڈ مین, کچھ بھی کہہ لیجئے, ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات کا یقین دلاتے تھے, یعنی تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے, لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. وہ آنکھوں میں وہ ساری انویٹیشنز آئیں گی جو دوستوں کی طرف سے آتی تھی اور میں ان کو اوور لک کر دیتی تھی. جہنم کے دروازے پہ اللہ نے ہم سب کو کھڑا کر دیا ذہنی طور پہ. کہا جائے کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے, بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. سوچی ذرا ایک سیکنڈ کے لیے, کیا بنے گا اس دن ایسی سوچ کے ساتھ؟ اب اس کے بعد ایک دوسرا گروہ, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے, یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے, اور وہاں کہنے کے بعد ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو, تم پاکیزہ ہو, تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. ہمیشہ کے لیے, سوچیے ذرا, پہلے بھی یہ لفظ میں نے نہیں بولا کیونکہ دل میں اتنی ہمت نہیں ہے, زبان میں طاقت نہیں ہے, اور آپ کے کانوں میں سکت نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ کسی کو جہنم کے تنور میں ڈال کے کہہ دیا جائے ہمیشہ رہو اب اس میں, کیونکہ کچھ کو شاید اللہ بعد میں نکال دے. جنت میں جانے کے بعد کسی کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. اب جنتیوں کو جب یہ خوشخبریاں مل گئیں کہ ہم پہنچ گئے, فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ, یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں. بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے, عمل کرنے والوں کا, صرف دعائیں مانگنے والوں کا نہیں, صرف خواہشات رکھنے والوں کا نہیں. تو لکھیے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جنت صرف خواہشوں سے نہیں ملتی, ورنہ تو ہر ایک چلا جائے اس میں, اور جنت صرف دعاؤں سے بھی نہ ملتی, ورنہ ماؤں کے بچے تو جنتوں میں چلے ہی جائیں, کیونکہ کون سی ماں جو اپنے بچے کو جنت کی دعا نہ دے. اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑے گی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا, اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو یہ تھی سورت زمر, آپ نے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا. کیسے خوشخبریاں, تب تم تب تم, ویل ڈن, ویری گڈ, شاباش. دنیا کا ڈراپ سین ہے اور آخرت کا پردہ چاک ہو گیا, اور وہاں سے وہ سب دکھنے لگا جو یہاں نہیں دکھتا تھا. تو عمدہ اجر ہے عمدہ عمل کرنے والوں کے لیے. ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ جسے ہدایت دے سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو کیا کریں, اچھے لوگوں کی قدر کیجئے جو آپ کو ہدایت کی طرف بلائیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ نیند اور موت کے وقت روحیں قبض کی جاتی ہیں, ایک واپس آ جاتی ہے دوسری واپس نہیں آئے گی. پھر انسان کے ناشکرے پن کو دیکھا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ, اور سچی توبہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. अल्लाह में सच्ची तौबा की तौफीक दे, ला तकना तो मेरा रहमत इल्ला। इस जुमले को तो दिल के साथ लिख ले हर मौके पे के ला तकना तू, बच्चों के रिश्ते ला तकना तू, घर की हालत ला तकना तू, दुनिया के हर गम के ऊपर कहिए मैं अपने रब से बड़ी पुर उम्मीद हूँ कि हालात अच्छे हो जाएंगे। फिर इसी तरह हमने देखा कि क्यामत के दिन इंसाफ से फैसले होंगे। अब आपके मेरे हाथ में गेंद है, जिस कोर्ट में मर्जी डाल दीजिए। तो ज़रूरत इस बात की कि आपको मुझे अपनी फ़िक्र लग जाए इस सूरत को पढ़ने के बाद। दुआ कीजिए अपने और अपनी दोस्तों के लिए। अकेले काम करें तो मुश्किल लगता है, मिलकर करें तो आसान होता है। और ये यकीन कीजिए कि जिसको आपसे मोहब्बत है ना, वो ज़रूर आपकी मोहब्बत भरी बात और पुरदर्द बात पे कान धरेगा। अगली सूरत मोमिन, जिसको सूरत गाफिर भी कहते हैं, 40 नंबर की सूरत है और 85 आयात हैं। एक मर्द मोमिन का जिक्र है इसमें। हवामीम से शुरू होने वाली पहली सूरत है, यानी हामीम से शुरू होती है ये सूरत। शिर्क फिर दुआ इस सूरत का बुनियादी टॉपिक है। एक मर्द मोमिन के नाम पे ये सूरत है, जिसको अपने दोस्तों की फिक्र बड़ी थी। कैसे वक्त के हालात से ऊपर उठकर अपने इर्द गिर्द वालों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसके साथ भी वही किया जो अमूमन लोग हक की दावत देने वालों के साथ करते हैं। और इस सूरत में भी अर्श के फरिश्तों का जिक्र है। इस सूरत में भी आपको बार बार, बल्कि अगली भी सूरत, ये पूरा पारा ही जैसे शुरू में टाइटल दे दिया ना, अर्शियों से फरशियों तक, तो आप अपनी याद दहानी में लिख लें पारा नंबर 24 में फरिश्तों का, और फरिश्तों में भी आला तरीन फरिश्ते जो अर्श को उठाते हैं उनका तस्कर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير। حاميم इस किताब का नाजिल फरमाना उस अल्लाह ताला की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह का बख्शने वाला और तौबा कबूल फरमाने वाला, सख्त अजाब वाला, इनाम और कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की तरफ वापस लौटना है। अल्लाह ताला की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, बस इनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है इस सूरत का। आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुछ सिफात हैं, मसलन लफ्ज़ अल्लाह, फिर अल अज़ीज़, फिर अल अलीम, फिर गाफिर अज़्ज़म, वक़ाबिल तौब, शदीद अल इक़ाब, ज़िद तौल। ये अल्लाह ताला की वो सिफात है जिसका अमूमन बख्शिश से ताल्लुक़ है। बस आप देखिए कि गाफिर अज़्ज़म, जो छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ करने वाला, काबिल तौब, जो कबीरा गुनाहों की तौबा करने वाले को माफ़ करने वाला, शदीद अल इक़ाब, जो गुनाह करके ना पलटने वालों को डराने वाला, और ज़िद तौल, जो गुनाहों से तौबा करके पलटें फिर उनको रहमत के साथ मिलने वाला। ये ताल्लुक़ है अल्लाह का आपसे। जो अल्लाह से डरेगा वही अल्लाह के सामने सुरखरू होगा। मोमिन 24/7 ऑन जॉब है, उसका ध्यान अल्लाह की तरफ होता है और हर वक्त अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात का मिसदाक बनता है। इसके बरक्स वो लोग जो अल्लाह से नाराज़ हैं या अल्लाह उनसे नाराज़ है, अल्लाह कहते हैं मा युजादिलुफी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ने वाले, बहस मुबाहसे करने वाले, अल्लाह ताला कहते हैं आपको धोखे में ना डाले, तकल्लुबुहुम फिल बिलाद, अल्लाह का नाफरमान दुनिया में कितना कामयाब क्यों ना दिखे, इन लीड्स में से हो, एंकर में हो, बड़े में हो, छोटे में हो, आप उनकी कामयाबियों से धोखे में ना पड़े, क्योंकि ये दुनिया का 4 दिन का फ़ायदा कल आखिरत के नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। अब आगे चंद नबी कराम के तस्करे हैं इशारतन। कस्सबत कबलहुम कौम नूह, कौम नूह ने और इनके बाद के गिरोहों ने भी छुटलाया था, और हर उम्मत ने रसूल को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया। नोट कीजिए, नबियों से ज़्यादा कौन अच्छा दोस्त होगा और अच्छाई की दावत देने वाला होगा, लेकिन कौमें तो उनको कैद करने के इरादे किए बैठी होती हैं और बातिल के ज़रिए झूठे बहस मुबासे किए ताकि इनसे हक को बिगाड़ दें। बस मैंने इनको पकड़ लिया, ये लफ्ज़ मैंने को नोट कीजिए, अखज़्तुहुम, बहुत बड़ा एक दिल के ऊपर बोझ पड़ता है सिर्फ ऐसे जुमलों को सुन के जिसमें बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ बात जाती है। कोई कहते ना अल्लाह पकड़ता है, ये भी बड़ी बात है, और अल्लाह खुद खड़ा होके कि मैं पकड़ता हूँ, जहन में ले लीजिए दुनिया के किसी भी मिसाल से, बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। आप कहते हैं पुलिस आपको पकड़ेगी और अगर थानेदार साहब खड़े होके कहीं इधर मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, फर्क है? तो अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं। अब फिर सुनिए, बस मैंने इनको पकड़ लिया, बस कैसी हुई मेरी सजा। और इसी तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो दोजखी हैं। अपनी दोस्तों के लिए दुआ करें अगर कोई कुफर और शिर्क में पड़ चुकी। क्या आप और मैं तसव्वुर भी कर सकते हैं कि हमारी कोई दोस्त आग में जाए? आज अपनी दोस्तियों के वास्ते देकर अपनी दोस्तों को रुला दें कि मैं तुम्हें आग में जाता नहीं देखूंगी, और ये अल्लाह का फैसला है कि हाँ कुफर और शिर्क के साथ मरने वाला आग में जाएगा, तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कहती। देखिए, आप और मैं किसी इंसान, बड़े से बड़े इंसान जो किसी बुत के आगे खड़ा है या वो सूरज को सजदा कर रहा है या आग को कर रहा है, मैं आप उसको नहीं कह सकते, वल्लाही। ये काम अल्लाह का, या अल्लाह बता दे तो नबी का था कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी। आपको क्या पता कौन किधर चला जाए, लेकिन मोहब्बत में जोश पैदा करने के लिए, अपनी मोहब्बत को दिखाने के लिए, दिलों को हिलाने और दिलों को गरमाने के लिए हम अपने प्यारों को एहसास तो दिला सकते हैं। आगे देखिए आयत 7, ये है ईमान का रिश्ता जो अर्शियों से फर्शियों को मिला देता है, अर्श पर रहने वाले फरिश्तों का फर्श पर रहने वाले कमज़ोर इंसानों के लिए दुआएं करना। और हकीकत के इल्म की महफिलों से दूरी फरिश्तों की दुआओं से महरूमी है। अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहू, अर्श के उठाने वाले और इसके पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम के साथ साथ करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तग़फार करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ आपको सुनकर? हर वक्त तो कहते रहते हैं मामा दुआ कीजिए, आंटी जी दुआ कीजिएगा, फलां से दुआ कीजिए, दुआएं दुआएं। कितनी तमन्ना है मेरे समेत आपकी कि अच्छे लोगों से दुआएं लें, प्यारों से दुआएं लें, उस्तादों से दुआएं लें। शायद ही कोई दिन खाली जाता होगा जब कई लोगों के दुआओं के मैसेज ना आ जाए, या देने वाले या लेने वाले या मांगने वाले। और वो तो दुआएं दिल की तहों से लेते हैं जो अपनी ज़ात के तकाज़ों से ऊपर उठकर अल्लाह के दीन के गम लगाते हैं। अल्लाह उन सब के गम दूर करते हैं, उनके कामों को खुद बना ले। ये वो दुआएं होती हैं जो मुंह से नहीं आती, ये दिल की रगों में से निकलती हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि इंसान दुआ करे पता नहीं कबूल होगी भी कि नहीं, अल्लाह नेक की ना करे कबूल, अल्लाह बद की कर ले, उसके फैसले हैं। लेकिन यहाँ उन फरिश्तों की बात है जो फरिश्तों में भी सबसे अलग कैटेगरी के फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के अर्श को उठाने वाले। 8 फरिश्तों का जिक्र हम पढ़ेंगे क़यामत के दिन जो अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। तो ज़रा सी इनकी दुआओं पे ज़रा सोचिए, कान लगाइए, शायद पहले आपने गौर ना किया हो। मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी इसको क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। और वो कान, अर्श के उठाने वाले और इसके पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम के साथ साथ करते हैं, पहले खुद भी तस्बीह करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं, फरिश्तों का अपना ईमान भी अल्लाह पे, और ईमान वालों के लिए इस्तग़फार करते हैं। यानी इनको पता है कि ईमान वाले कोशिश तो बड़ी करते हैं गुनाहों से बचने की, लेकिन अगर कभी किसी का पाँव फिसल जाए, कोई गलती कर दे, तो ये फरिश्ते फौरन बीच में आके कहते हैं अल्लाह इनको माफ़ कर दे, ये बहुत अच्छे हैं, ये वैसे हैं। और जब कभी ईमान वालों के कदम फिसलने लगें तो फरिश्ते इनकी साबित कदमी की दुआएं मांगने लगते हैं। और ऐसे फरिश्ते हैं जो दुआएं करते हैं और कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस इनको बख्श दे। नाम लें अपने, आपका नाम लेके फरिश्ते के, अल्लाह इफ़त को बख्श दे, ए अल्लाह सलमा को बख्श दे, फलां को बख्श दे, फलां को बख्श दे। किनको बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें और तू इन्हें दोजख के अजाब से भी बचा ले। है किसी को इन लोगों की खुशकिस्मती पे शक? ये तो वो फरिश्ते हैं कि जो हकीकत में अपने प्यारे रिश्तों से भी ऊपर बढ़ जाते हैं। कहाँ अल्लाह ताला उनको आपके लिए ला रहा है, वो अर्श पे बैठे, आप फर्श पे बैठे, आपके लिए दुआएं करें। याद रखिए कि ईमान का रिश्ता है ही इतना खूबसूरत रिश्ता, हजारों मील का फासला तय हो जाता है लम्हों में। ये नहीं होता कि कौन कब इस काफिले में दाखिल हुआ, कौन चला गया, ये ईमान फासलों को समेटता है। जिस तरह मोमिन एक दूसरे के लिए दुआएं करने वाले होते हैं क्योंकि उनके बीच में भी ईमान का रिश्ता होता है, इसी तरह फरिश्ते भी ऐसे लोगों के साथ कुर्बत महसूस करते हैं क्योंकि ईमान का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा है। ये तो खून के और नस्ब के रिश्तों से भी बहुत आगे निकल जाता है। आपने भी कुरान और दीन के साथ जुड़ने के बाद दोस्तियां देखी होंगी, एक दफ़ा हर जगह क्लास में रोज आने वालों की दोस्तियां देखिए, देर तक चलती है, ना गिले ना शिकवे ना उम्मीदें, दिल नहीं चाहता छोड़ने को, छोड़ के जाएं तो जाते इंतजार है, और जो साथ करने वालों के लाड मैं देखती हूँ, अल्लाह सबको दिखाए। जब दिल मिले होते हैं ना, तो क्या किसी को पिकनिक स्पॉट पे जाके मजे आते होंगे, और क्या वो खाते पीते दावते बाजार घूमने में जो लोग काम करते हुए देखते हैं, और मेरी आंखें देख रही होती हैं अल्लाह के नबी के साथियों को, खंदक खोदी जा रही है, पेट पे पत्थर हैं, कई कई दिन के चूल्हे बंद हैं, और लाड और मोहब्बतें तो देखिए, जाकर रही को मखदूम का सिर्फ गज़वे खंदक का वो बाब पढ़ लीजिए जो अल्लाह के नबी और साथी खंदक खोदे, मजाक जॉलीनेस, अल्लाह मलाइशा इल्ला ईशा आखिरा, अल्लाह ऐश तो कोई है ही नहीं मगर दुनिया के ऐश, अल्लाह महाजरीन और अंसार को बख्श दे, फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल महाजिर, ये अल्लाह के नबी की दुआएं थी खंदक खोदने वालों की। ये कैसे हो सकता है कि लोग आपके दिल की बात को कागज़ों पे ले आएं, सफ़ों पे ले आएं, दुनिया के सामने ले आएं, और आपके दिल से उनके लिए दुआएं ना निकलें? ये कैसे हो सकता है कि लोग आपके मिशन के साथी बन जाएं और वो अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा प्यारे ना आपको हो जाएं? कल ऐसे ही बैठे हुए सोच रही थी और दिल में आ रहा था कि मोहब्बत करने वाले बहुत होते हैं, तारीफ़ें करने वाले तो अच्छे ही नहीं लगते मुझे, किसी के सामने कर दें अगर अपना जर बनाना है या दूसरों को जोड़ना है, मुंह पे करी तो क्या की, लेकिन मिशन के साथी कितने हैं, इस दर्द को उठाने वाले कितने हैं, इस दर्द को दिल पे लेने वाले कितने हैं, असल वो अपने हैं। हर दौर में लोग ने इवन अंबिया कराम की मोहब्बत में नातें भी बड़ी पढ़ी, अशार भी कहे, लेकिन वो अपनी उंगलियां कटाने वाले कितने हैं, अल्लाह के नबी की उंगली कट गई खंदक खोदते खोदते, और आपने इतना प्यारा शेर पढ़ दिया जिसका तर्जमा क्या है, ऐ मेरी उंगली तो एक उंगली ही तो थी, तू कितनी खुशकिस्मत है कि मुझसे पहले अल्लाह को मिल गई, लकी थी मिन कबली, मुझसे पहले जाके अल्लाह को मिल गई है। ये लाड होते हैं अल्लाह के रस्तों में काम करने वालों के, प्यार भी है मोहब्बत भी है, अल्लाह के नबी ये पत्थर हमसे नहीं टूट रहा, सब ने कोशिश कर ली एक पत्थर नहीं टूटा, आपने कहा पीछे हो जाओ, जैसे माँ नहीं कहती मेरा बच्चा पीछे हो मैं करती हूँ, और बाप कहते मेरा बच्चा तू पीछे हो मैं करता हूँ, और एक खुदाल मारी और आपने कहा मुझे कैसरा किसरा की चाबियाँ दिखाई गई, कैसर की चाबियाँ दिखाई गई उसके खजाने, और जो चंद मुनाफिक नुमा लोग इर्द गिर्द होते हैं उन तक बात पहुंची, हंसने लगे, ठट्ठे मजाक अकेले की बातें, देखो पेट पे पत्थर है, बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं है, और कह रहे हैं कि हमें कैसरो किसरा के खजाने दिखाए गए, उस पे आयतें उतरी थी, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाओ, और आगे की आयतें सूरत आले इमरान है। तो इल्म की महफिलें तो खूबसूरत होती हैं जो काम करने वालों की महफिलें, शर्त एक है कि दिल में ले हो, शर्त एक है मिशन एक हो, शर्त एक बदगुमानियां ना हो, शर्त एक लेग पुलिंग ना हो, और फोकस्ड हो, दिन रात साथ बैठकर भी दिल ना भरे, और अगर आपके पास तो जॉब्स इतने और काम इतने और आप कहते मैं तो उसके पास भी उसके साथ, तो क्लैश नहीं होंगे तो और क्या होंगे, दो मालिक किसी के हों तो वो गुलाम तो बेचारा किसी को खुश ना कर सके। तो याद रखिए फरिश्तों की दुआएं लेने का तरीका, लव योर जॉब, लव योर वर्क, अपने इस संसार उल्ला होने पे सजदों में सर रख दें, जिम्मेदारान का लफ्ज आपके साथ लग गए अल्लाह की कसम इसका तमगा गले में डालकर कभी ना उतारें, आपकी जगह आपसे अच्छे नहीं आप जैसे तो आ जाएंगे, मेरी जगह मुझसे अच्छे बहुत आएंगे, ये मेरा गुमान है, ना कदरियाँ ना करें रिश्तों की, अगर अल्लाह ने आपको किसी जगह की चाबियाँ दे दी हैं ना तो इनका हक अदा कीजिए। वकाशा के हाथ में अल्लाह के नबी ने एक लकड़ी की तलवार पकड़ाई, वो चमकती हुई तलवार बन गई, कहा वकाशा भी इस तलवार का हक अदा करना, साहबा की कहानियाँ तो पढ़िए फिर आपको समझ आएगा ये आयतों में किस रिश्तों की बात है, और दिल में बदगुमानी है और लैग पुलिंग और नेगेटिविटी और ये ना हो तो वो ना, वहाँ खाक बरकत होगी। तो याद रखिए फरिश्तों की दुआएं लेने वाले काम कीजिए। सुन लीजिए ज़रा एक हदीस, क्योंकि हदीस बड़ी प्यारी है, बुखारी में भी है 6408 और मुस्लिम में 2689, और अबू हुरैरा जो साया बन के अल्लाह के नबी के साथ चिपके रहते थे उनके ज़रिए पहुंची, वही लोग काम करते हैं जो फ़ौरन अवेलेबल होते हैं, कई के दिन बात सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, रिस्पांस तो दिया कोई नहीं, याद रखे अल्लाह के नबी को भी गायब नहीं पता था कि इस वक्त मेरा फलां साथी किधर बैठा हुआ है, तब वो हुरैरा को रात को पुकारा दिन को पुकारा वो हाजिर थे, क्यों हाजिर थे, क्योंकि अपने ऊपर और चीज़ें नहीं ली हुई थी, हम इतनी चीज़ों में अपने आप को डाल कर बाद में कहते टाइम नहीं मिलता, याद रखिए आपको मौत के वक्त पता चलेगा आपने क्या गलत फैसले किए थे, ज़िंदगी में अगर ना भी पता चला, कहा करते थे कि मैं शादी नहीं करता इसलिए कि कहीं मैं बीवी बच्चों में पढ़कर इल्म की महफिल से दूर ना हो जाऊं। और ऐसे और भी दयाले थे। अल्लाह के नबी को घर के बाहर आवाज आई हल्की सी हथियारों की, झांक कर देखा तो सहाबी खड़े हैं हथियार बांधे हुए। ये क्या हो भाई, आप क्यों आ गए? हम होते कहते बीवी से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं अल्लाह के नबी, सुबह में तो आपके पास बड़े लोग होते हैं, मैं तो रात को इस सोच से आ गया कि आपको कोई जरूरत पड़ गई तो मैं क्या आपकी मदद ना कर दूं, मैं आपके वजू का पानी रख दूं, मैं आपकी दुआएं ले लूं। अनस दुआएं ले ले के चले गए, सबसे लंबी उम्र पाने वाले, दौरे सहाबियत की हद फासिल है। हजरत अनस 100 के करीब उनकी नस्ल में हाफिज थे, पोते नवासों की सूरत में जिन्होंने दुआएं ली। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह अनस को बरकत दे, इसके माल इसकी औलाद में बरकतें दे। तो याद रखिए, ये फरिश्तों की दुआएं हों या दिल से निकली हुई दुआएं, ये ज़ाया नहीं होती। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ जायद फरिश्ते ऐसे भी हैं जो चलते फिरते रहते हैं। हदीस में इनका नाम है सैयारा, सारा यसीरु सैरन से उनका नाम क्या, सैयारा, चलने फिरने वाले, और जिक्र की मजालिस तलाश करते हैं। तो जब वो ऐसी मजलिस पा लेते हैं जिसमें जिक्र हो तो इनके साथ बैठ जाते हैं। कौन सा जिक्र? इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। सबसे प्यारा जिक्र ये कुरान है। इससे मुराद की खुद साख्ता जिक्र की महफिलें नहीं, कि वहाँ फरिश्ते तो नहीं आएंगे बल्कि वहाँ तो कुछ और होगा, खिलाफ सुन्नत महफिलें होंगी। मुराद जाएँ कि इल्म की महफिलें, कुरान की महफिलें। फिर ये भी बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढांप लेते हैं, यानी उनको सायों में डाल देते हैं। यहाँ तक इनसे लेकर आसमान दुनिया के दरमियान का खला भर दिया जाता है। बस जब अहले मजलिस वापस हो जाते हैं तो ये फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे पूछता है, हालांकि वो बखूबी जानता है उसको क्या ज़रूरत है पूछने की। क्या पूछता है? तुम कहाँ से आए हो? तो वो अर्ज़ करते हैं, हम ज़मीन में तेरे बंदों के पास से आए हैं। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, पता होता है आपको बात का, लेकिन आपका दिल करता है साथियों से सुने, उन्होंने क्या देखा, उनको क्या पता चला। बिल्कुल वही अंदाज है इधर भी, कि अल्लाह को तो पता है। कोई इससे ये ना सोचे कि अल्लाह को पता नहीं होता जब तक तो कोई बताए ना। हमें तो नहीं पता होता लेकिन अल्लाह को तो पता है। फिर भी इंजॉयमेंट के लिए, मजा लेने के लिए अल्लाह ताला कहते हैं, सुनाओ भाई कहाँ से आए हो? कल्ला तेरे बंदों के पास से आए जो तेरी तस्बीह तकबीर तहलील और तारीफ कर रहे थे और तुझसे सवाल करने में मशगूल थे, यानी दुआएं मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुझसे क्या सवाल कर रहे थे? वो अर्ज करते हैं, वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? वो अर्ज करते हैं, नहीं ऐ मेरे परवरदिगार, यानी नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो इसको देख लेते तो इनकी क्या कैफियत होती। अल्लाह अकबर। वो अर्ज करते हैं, और वो तुझसे पनाह भी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मुझसे किस चीज़ की पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, रब तेरी जहन्नुम से। तो अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने मेरी जहन्नुम को देखा? वो अर्ज करते हैं, नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो मेरी जहन्नुम को देख लेते तो इनकी क्या कैफियत होती। फरिश्ते अर्ज करते हैं, और वो तुझसे मग़फ़रत भी मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन मैंने इन्हें मुआफ़ कर दिया है और इन्होंने जो मांगा मैंने इनको अता कर दिया, यानी जन्नत, और मैंने इन्हें पनाह दी उससे जिससे उन्होंने पनाह मांगी, यानी जहन्नम। फरिश्ते अर्ज़ करते, ठहरे अल्लाह, नहीं नहीं, यानी फरिश्ते एकदम रोकते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, रब इनमें फ़लां बंदा गुनाहगार बैठा है, वो वहाँ से गुजरा तो इनके साथ बैठ गया, यानी नियत ही नहीं थी। वही बात के मरव्वत में आ गई, आज भी ना गई तो फिर वो कहेंगी कि आज भी नहीं आई। कई दफ़े इल्म की महफिलों में ऐसे लोग आते हैं सिर्फ इसलिए आ गए कि अब ना नहीं कर सके, तो फरिश्ते तो सोचते हैं कि इनको ना बख्शा जाए, लेकिन ज़रा सुनिएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने इसे भी माफ़ कर दिया क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि इनके साथ बैठने वालों को भी महरूम नहीं किया जाता। ये है अच्छी सोहबतें, ये है अच्छी दोस्तियाँ। बगैर नियत के आए, बगैर दुपट्टों के आयों को भी अल्लाह बख्श देते हैं। सहेलियों की खुशी के लिए आए, आगे से बाजार जाना है, साथ लेकर किसी को जाना है, फिर भी आ गए। कोई कोई चीज़, कोई खाना, कोई दही बल्ले ड्रॉप करने आ गए, अल्लाह उनको भी महरूम नहीं करता। इन मजलिसों की कदर कीजिए, ये महफिलें। आज लोग कहते हैं बीमार है, हालांकि बीमारियों का इलाज इन फरिश्तों की दुआओं में था। आपने छुट्टी करके घर में लेके क्या तीर मार लिया? आप इन दुआओं को लेने के लिए बीमारियों में आ जाया करें, परेशानियों में आ जाया करें, दुखों और खुशियों में आ जाया करें, ताकि आपको फरिश्तों की ये दुआएं मिलने लगें। और याद रखिए, कुछ फरिश्ते तो अल्लाह ने बनाए इसलिए कि वो ईमान वालों के लिए दुआएं करते रहें, कुछ सारा दिन घूमते रहते हैं कि देखें इनकी महफिलों को, ढूंढें और वहाँ चलें। और याद रखिए, ये हदीस कुदसी भी है, क्या मुख्तलिफ अल्फाज से खूबसूरत तरह से मिलता है। तो इल्म की महफिलों में आने की इतनी अहमियत जिसकी हम ना कदरियाँ करते हैं। तो एक जुमला अपने नोट्स में लिख लीजिए, इल्म की महफिलों से दूरी, फरिश्तों की दुआओं से महरूमी। आप बाद में रिकॉर्डिंगें सुने, आप जो मर्जी करें, लेकिन फरिश्तों ने दुआएं नहीं की आपके लिए, इसलिए इन लोगों की कदर करनी है। और बुखारी के अल्फाज में ये भी है कि फिर अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? रावी कहता है कि वो जवाब देते, नहीं अल्लाह की कसम, उन्होंने तुझे नहीं देखा। युमिनूना बिलगैब। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो इनका क्या हाल होता? वो जवाब देते हैं, अगर वो तेरा दीदार कर लेते तो तेरी इबादत और भी बहुत ज्यादा करते, तेरी बड़ाई सबसे ज्यादा बयान करते, तेरी तस्बीह सबसे ज्यादा करते। फरिश्ते ईमान वालों के लिए इस्तगफार की दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें दोजख के अजाब से बचा ले। आप भी अपने लिए दुआ कीजिए। अर्श के उठाने वाले और इसके पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ साथ करते हैं, आप भी कर लीजिए। और अगर बुरी दोस्तियों के फितनों में मुबतला हैं तो अगर तौबा कर लें और अल्लाह के रास्ते की पैरवी करें तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बख्शिश फरमाता है। और अभी इनकी दुआएं पूरी थोड़ी हुई हैं, अभी तो सिर्फ हमने दुआ का एक हिस्सा पढ़ा, अब अगला हिस्सा भी सुन लीजिए। आयत नंबर 8, पहले तो आपके लिए दुआएं थी, अब आपके बच्चों और आपके घर वालों के लिए दुआएं करते हैं फरिश्ते। रब्बना वादखिलहुम जन्नाति अदनिन लती वअतहुम, ऐ हमारे रब, तू इन्हें हमेश की वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया है, और इनके बाप दादाओं और बीवियों और औलाद में से भी इन सब को जो नेक अमल करते हैं, यकीनन तू गालिबो बा हिकमत है। और फरिश्तों की अगली दुआ, और इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख, हक तो ये है कि इस दिन जिसे तूने बुराइयों से बचा लिया इस पर तूने रहमत कर दी, और बहुत बड़ी कामयाबी तो यही है। बेशक जिन्होंने कुफर किया इनको आवाज़ दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुमसे बेजार होना इससे बहुत ज्यादा है जो तुम बेजार होते थे अपने जी से जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे, फिर कुफर करने लगते थे। बड़ा गुस्सा आता था तुम्हें नेकियों की और ईमान की दावतों को सुनकर, ये बातें ना करे तो फलां बड़ी अच्छी है, ये क्यों बार बार ईमान की और इस्लाम की दावत देती है, ये क्यों बार बार दर्स की दावत देते हैं। हर एक अपने एंगल से देख सकता है। अभी भी फरिश्तों की दुआ पूरी नहीं हुई। कालू रब्बना, वो कहेंगे हमारे परवरदिगार, तूने हमें दो बार मारा और दो ही बार जिंदा किया, अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं, तो क्या अब कोई राह निकलने की भी है? ये अजाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार कर जाते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। ये जाते हैं लोग, बिलीव में, ये शिर्क वाली बातें नहीं है, ये कब्र परस्ती और बुत परस्ती नहीं, मुसलमान भी यही चाहते हैं। लेंगे दीन, सुनेंगे बातें, पर उसकी जो कुछ अल्लाह की कुछ दूसरी, दीन भी रखो दुनिया भी रखो, इतना टू मच ना हो, और ये और वो और इस तरह से, और ये करो वो करो, बल्कि उनको पीछे करते हैं। आप देखिए कि लोगों को अच्छा ये लगता है कि लोगों का भी जिक्र होता रहे और अल्लाह का, कुछ महफिल में नाते भी हों, कुछ धूम धड़क का भी हो, कुछ दर्स भी हो जाए, छोटा सा दर्स, लंबी सी दुआ। तो कहते हैं, अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता तो तुम मान लेते थे, बस अब फैसला अल्लाह बुलंदो बुजुर्ग का है, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है, और नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। तुम अल्लाह को पुकारते हो इसके लिए दीन को खालिस करके गो काफिर बुरा मान लें। तो यहाँ फरिश्तों की दुआओं का जरा ये हिस्सा भी देख लीजिए, जिसमें माँ बाप, अजवाज और जुर्रियात को जन्नत में साथ करने की दुआ। आप देखिए कि जब घर के कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेकियों में आते हैं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, मसलन बच्चे माँ बाप को ज़्यादा भागता देखे तो कहते हैं, अब आपको हमारी केयर नहीं, भाई बहन है तो वो कहेंगे, अब आपने तो एक ही काम ले लिया, अब आप तो हमारी खुशियों गमियों में भी नहीं आती। बच्चे भी कहेंगे, माएँ, शोहर शोहर अपनी बीवी को कहते हैं, तुम टू मच नहीं हो गई, बहुत वक्त दे रही हो। और दूसरे बहुत कहेंगे, शोहर बेचारे तो बड़े अच्छे होते हैं दीन वालों के, ये मैं आपको अंदर की बात बता दूँ, तजुर्बे की बात, मुशाहदे की बात, सच्चे दिल से दीन की खिदमत करने वालों के शोहरों के दिल में अल्लाह उनका प्यार डाल देता है। और यही बात बीवियों में भी होगी अगर मर्द दीन की तरफ, तबलीग की तरफ भाग भाग के जाते हैं। शर्त एक है कि बैलेंस रखिए, आप एस्केप रूट ना बनाइए कि घर के काम छोड़ दें क्योंकि दीन की खिदमतें कर रहे हैं, ये कोई दीन नहीं है। लेकिन जब कभी किसी को अपनी फैमिली में आगे बढ़ता देखें तो इस आयत को याद कर लीजिएगा। आप खुद अपने बच्चों में, भाई बहनों में, बीवियों में किसी को दीन में ज्यादा वक्त लगाता देखें, इल्म की महफिलों के लिए तैयारियां करते कराते, खाने पकाते, घर सजाते देखें तो खुश हुआ करें। शायद यही हो जो आपको इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में ले जाए, थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास में ले जाए। क्योंकि जब पूरी फैमिली जन्नत को क्वालिफाई करेगी तो कुछ और के दर्जे भी एलिवेट कर दिए जाएंगे। ये है बात। अल्लाह वहाँ ईमान वालों को अपनी औलादों की महरूमियाँ नहीं रखेगा, बच्चों को मिलवाने के लिए लाएगा ऊपर माँ बाप की जन्नत में, और जब उन्होंने देख लिया तो जन्नत के लिए अल्लाह का असूल है, जिसने एक नेमत एक बार देख ली उससे महरूम नहीं होगा। बस बच्चे अपने माँ बाप को आगे ले जाएंगे, इसलिए अपने जवान बच्चों के कदम मत खींचिए, अपनी औलादों के कदम मत खींचिए नेकियों की तरफ बढ़ते हुए, बीवियों के कदम मत खींचिए शौहरों के मत। शायद यही आपके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करवा दें या आपके स्टेटस को बढ़ा दें। आप देखिए, बाज़ दफ़ा बीवियों की वजह से वीज़ा लगते हैं तो मर्द बड़े आला मुल्कों में पहुंच जाते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके अच्छी जॉब्स पे जाने वालों के हालात बदल जाते हैं। सारी ज़िंदगी बड़ी ईमानदारी से मास्टरी की, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया, बच्चे पढ़ गए, लिख गए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे गए, घर बदल जाता है। तो वो माँ बाप कितने काबिल रश्क होते हैं, अच्छा जी आपके तो बच्चे बड़े ही नेक निकले, तो ज़रा से उससे ज़्यादा नेक निकलने लगे और नेकियों में जाएं और आपके वहाँ के दर्जे बुलंद करें तो वो अच्छे नहीं। कितना माँ बाप उस बच्चे से डरते हैं और उसकी इज्जत करते हैं जिसकी वजह से घर का खर्चा चलता है और घर के हालात बदल रहे हैं। तो आपके मेरे वो बच्चे जो हमारे से ज़्यादा नेकियों में जा रहे हैं, उनको भी खुशियों से देखिए और उनके लिए दुआएं किया करें। इसके बरक्स हम तो न जाने दीन में आगे बढ़ने वालों को क्या कुछ कहते हैं, गैर तो क्या कहेंगे हमें टेररिस्ट। हम तो अपने आप को ज़रा आगे बढ़ता जाके तो किसी को फलां और फलां नाम देते हैं, और ये सब तब होता है जब अल्लाह की कदर नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, रफ़ीउ दरजाति ज़ुल अर्श, बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है ताकि वो इस मुलाकात के दिन से डराए जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे। याद रखिए, आज बहुत सारों की असल छुपी हुई है। जाहिर अच्छे काम करने लोग अच्छा कहना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, और बुरे काम करने वाले जब फासिकीन है तो वो फासिकी हैं, लेकिन असल क़यामत के दिन जाकर खुलेगी, उनकी कोई चीज़ अल्लाह ताला से पोशीदा न रहेगी, और कहा जाएगा आज किसकी बादशाही है। इसको भी हाईलाइट कीजिए, बड़ी मारूफ आयत है कुरान की, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, फक्त अल्लाह वाहिद कहार की, आज हर नफ्स को इसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी किस्म का जुल्म नहीं, यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और इन्हें बहुत ही करीब आने वाली के दिन से यानी कयामत आगाह कर दीजिए, जबकि गम के मारे दिल हलक तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश होंगे, जालिमों का कोई दोस्त और वली ना होगा, ना तो कोई दिली दोस्त होगा ना सिफारशी कि जिसकी बात मानी जाए। दोस्तियों को नोट कीजिए, वहाँ भी अच्छे दोस्त सिफारिश करके जन्नत में दर्जे बढ़वाएंगे इंशाल्लाह। इमाम शाफी कहा करते थे, अगर तुम जन्नत में जाओ और मुझे वहाँ ना पाओ तो मेरे बारे में पूछना। तो हम भी एक दूसरे को इस तरह प्यार मोहब्बत में दीन के रास्तों में सपोर्ट करें कि वहाँ जाकर हम में से कोई किसी की कमी महसूस करे तो फौरन पूछे। और चूंकि सारा दिन माशाल्लाह साथियों के साथ गुजरता है, जहनी तौर पे ऑफ कोर्स, जिस्मानी तौर पे तो आजकल हम सब मुख्तलिफ जगहों पे हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ नाम ले लेके कि अगर इनमें से कोई एक भी ना मुझे मिले तो मेरा दिल कितना उदास हो जाता है। और यकीन करें, लाखों आ जाएं, एक ना आए उसका गम ज़्यादा होता है, नज़रें उस पर लगी होती हैं, हज़ारों लोग आपकी बात सुन के चले जाएं, लेकिन आपके दिल में हूक उठती है तो उनके लिए उठती है जिनसे आपका प्यार होता है। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने तो नहीं इनके बगैर रहना, अगर मैं किसी अच्छी जगह पे चली गई तो अल्लाह इनको मेरे साथ मिलाना, और अगर ये मुझसे अच्छी जगह चले जाएं आमीन तो फिर मुझे इनके साथ ले जाना। बिल्कुल वही ताल्लुक है जो बुढ़ापे में माँ बाप से बच्चों का होता है, या बच्चे माँ बाप को ले आते हैं या फिर माँ बाप बच्चों के साथ रहते हैं। तो जन्नत का सौदा कोई सस्ता सौदा नहीं है, आपने इसकी वो कदर नहीं पहचानी अभी तक, आपको पता नहीं चला अभी ये है क्या। माँ बाप के घर चंद साल रहकर हम निकल आए, भाई बहनों के साथ पले बड़े, आप तो हाल ना पूछें, और कई दिल में शिकवे पाले बैठे हमारा नसीब। लेकिन ये ईमान के रिश्ते हैं जो इस बारे में आपको मुझे एहसास दिला रहे हैं, इन महफिलों से कटने वाले अपना नसीब काट देते हैं, दुआओं से महरूम। और 90% ऐसे लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाते हैं। जिस दुनिया को कमाने जाते हैं, वो दुनिया मिल भी जाए तो सुकून और खुशी कोई नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला हमें कदर की तौफीक अता फरमाए। वो आंखों की खयानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। अल्लाह ताला ठीक ठीक फैसला कर देगा। और इसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, वो किसी भी चीज़ का फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला खूब सुनता, खूब देखता है। यानी अल्लाह के दर को छोड़कर जो भी काम करेंगे, जो सहारा ढूंढेंगे, वो झूठा सहारा है। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं के देखते, जो लोग इनसे पहले थे इनका नतीजा कैसा हुआ? वो बाएतबारे कुव्वत और ताकत के एतबार से दुनिया में, यानी जमीन में, अपनी यादगारों के एतबार से इनसे बहुत ज्यादा थे। पस अल्लाह ने इन्हें इन गुनाहों पर पकड़ लिया, और कोई ना हुआ जो इन्हें अल्लाह के अजाबों से बचा लेता। नोट किया आपने? बड़ी बड़ी ताकतें गुजर गईं और गुनाहों की वजह से चले गए। अल्लाह इनकी तरक्की से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ। अल्लाह ताला बिल्कुल मुतासिर नहीं होता इन चीज़ों से, जिनके पीछे आज लोग मरते हैं, एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। हाय घर, हाय गाड़ी, हाय उनके बच्चे। अल्लाह कहता है जब गुनाहों के साथ दुनिया किसी की बढ़ती है तो ये एक ढील होती है, और अल्लाह फिर ऐसी रस्सी खींचता है कि फिर चीखें निकल जाती हैं। ये इस वजह से कि इनके पास इनके पैगंबर मौजज़े ले ले कर आते थे। कल पैगंबर आते थे, आज दाई दीन आते हैं, तो वो इनकार कर देते थे। बस अल्लाह इन्हें पकड़ लेता है, यकीनन वो ताकतवर और सख्त अजाब वाला। पूरे पारे में आपको लग रहा है ना, दावत दीन का नेगेटिव रिस्पॉन्स देने वाले महरूम। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा फिरौन, हामान और कानून की तरफ, तो उन्होंने कहा ये तो झूठा जादूगर है। देखिए जरा मूसा का क्या इस्तकबाल किया ऐसे महरूम लोगों ने। बस जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से दीने हक लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ जो ईमान वाले हैं, इनके लड़कों को तो मार डालो और इनकी लड़कियों को जिंदा रखो, और काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती में है। हर दौर में परसिक्वेशन का शिकार हुए दीन वाले। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ दो कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को मार डालूं, और इसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे। तकब्बुर बोल रहा फिरौन का, मुझे तो डर है ये कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले या मुल्क में कोई बड़ा फसाद बरपा न कर दे। क्या मूसा के पास आर्मी थी, फौज थी, कोई गैंग था, कोई हथियार थे? किस चीज से डर है फिरौन? नोट तो करिए, वो तो मदियन से 2 तोहफे लेकर आए हैं, एक असा और एक यदे बैजा। खाली हाथ नहत्ते मूसा, भी उनके पास तो कोई मैन पावर भी नहीं दिख रही। इतनी देर बाहर रह कर आने वालों को तो लोग भूल ही चुके होते हैं। लेकिन फिरौन डर रहा था तो मूसा के हाथ में इस हक से डर रहा था। आज भी शैतान इसी हक से डराता है लोगों को, वरना दीन तो सबको ही अच्छा लगता है। तो कॉम्प्लेक्स था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है लोगों को, कि सच्चा दीन आ गया तो हमारे तौर तरीके नहीं चलने, फिर हमारे डिज़ाइन कौन लेगा, और फिर हमारी शॉपिंगें कौन लेगा, और फलां क्या होगा, और हम इन सारे कपड़ों का क्या करेंगे जो फिर हिदायत पे आने के बाद तो पहने ही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पहन सकते आप? असल बात यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको मिलना क्या था और आपने छोड़ा क्या है। इतनी बड़ी बात सुनकर भी मूसा का जवाब देखिए कितना ठंडे स्वभाव का है। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स की बुराई से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता। यानी अपने मामले को अल्लाह की अदालत में डाल दिया। यहाँ है अब आगे देखिए फिरौन की बुरी सोहबत का नतीजा। हमान, कारून और उमरा सरदार, ये सारे फिरौन के दरबारी और वजीर मशीर थे। फिरौन के साथ रहे, कुछ इन्होंने उसको बुरा किया, कुछ वो पहले से नाफरमान था। तो क्या होता है जब ऐसी दोस्तियां इर्द गिर्द लग जाती हैं, चंद बड़े लोगों में जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि आज किसी की बड़े जगह पे दोस्ती हो गई, फौज आर्मी में चला गया, या किसी बड़ी हुकूमत के करीबी जगह मिल गई। ऐसे ही लोग फिर करते क्या है? पहली बात है कि दीन हक को झुटलाते हैं, सरकशियों में हद से बढ़ने लगते हैं, तकब्बुर में खुदाई के दावे तक करने लगते हैं। और फिरौन ने तो बनी इसराइल के बेटों को कत्ल भी करवाना शुरू कर दिया, बनी इसराइल को मगलूब बनाए रखा, और मूसा पर मुल्क में फसाद फैलाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, और हज़रत मूसा को जादूगर कहा जा रहा है। ये सब बुरी सोहबत थी फिरौन की, जिसमें आकर उसके साथ रहने वाले भी शिकार हो गए। لیکن یاد رکھیے قریب والے نہ قدری کریں تو اللہ دور سے مدد لاتا ہے. یہ جملہ میں نے حبیب کے واقعے میں سورت یاسین میں بولا تھا, یہاں بھی یہی بولوں گی. جب فرعون اور اس کے ارد گرد والے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہوئے, نہ قدری کی تو کیا ہوا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے, اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا جھوٹا ہو. یہ ہے سچا دوست آپ کا. جب آپ پہ الزام لگے تو یہ آپ کی بے گناہی ثابت کریں. جہاں لوگ بیٹھ کر آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوں, یہ اس محفل کا رنگ نہ بنے. ہاں اور تو سناؤ, اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں, بس وہ دوستیں دوستوں میں بیٹھ کر اچھے لوگوں کی بدغیبتیں اور بدخویاں کرتی ہیں. یہ مومن سکھا رہا ہے کہ اس نے وقت کے رواج کے خلاف, موسیٰ کے اوپر بہت سی باتیں تھیں, اس نے آ کر موسیٰ کی سائڈ لی. اللہ نے اس کی حق پرستی اور حق کے اظہار پر اس کا نام قرآن میں ڈال دیا. لیکن نہ وہ شخص نبی تھا جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا, نہ یہ شخص نبی ہے. اور کہا جائے تو ذوالقرنین نبی نہیں تھے, لقمان نبی نہیں تھے, خضر کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں, لیکن انبیاء کرام کے علاوہ ان لوگوں کے نام اتنی بڑی کتاب جس کو دنیا کی کسی بڑی بک, چاہے گینیس بک یا کچھ اور سے, کہ اس میں آنے سے بڑی بات ہے. تو کیوں آئے ان لوگوں کے نام؟ یہ چیزیں نوٹ کیجیے اپنے لیے. ہم گونگے شیطان بن جاتے ہیں, منہ پہ آتے ہیں محبتوں کے دعوے, پیار محبت کی باتیں, اکیلے میں جڑیں کاٹتے ہیں, کڑوی باتیں. اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. اتنا کیوں ہمارے پیچھے پڑتے ہیں؟ ہمیں اتنا کیوں ماسے کرتے ہیں؟ ہمیں اتنا کیوں مجبور کرتے ہیں؟ تو اس شخص کی یہ خوبی اپنے دل پہ لکھ لیجئے, جب حق والے پہ باتیں ہو رہی ہوں تو آپ نے اس باتوں کا حصہ نہیں بننا. اور مزید نصیحت کرتا ہے لوگوں کو, اے میری قوم کے لوگوں, آج تو بادشاہ تمہاری ہے, کس زمین پر تم غالب ہو, لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اچھا دوست ایسا ہی ہوتا ہے, آنے والے وقت کے فتنوں سے وقت سے پہلے آگاہ کرتا ہے. فرعون بولا, میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں, اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں. نوٹ کیجئے, بڑے سے بڑا بھٹکا ہوا شخص بھی خود کو راہ راست پہ پاتا ہے, جیسے کہ فرعون کا یہ جملہ دکھا رہا ہے. اس مومن نے کہا, میری قوم کے لوگوں, مجھے تو اندیشہ ہے تم پر بھی ویسا ہی روزے بد نہ آئے جو اور امتوں پر آیا, جیسے امت نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا. اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا. یا قومی, بار بار دیکھیے اس کا پیار, دیکھیے یہ درد مندی ہوتی ہے مرد مومن کے اندر. یا قومی, اے میری قوم, مجھے تم پر قیامت کے دن کا ڈر بھی ہے, جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں, یعنی اس کو راہ نہیں دکھاتا کوئی. اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے. پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات عام تھیں, پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے, یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے, ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک و شبہ کرنے والا ہو, جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک تو یہ بڑی بیزاری کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے. فرعون نے کہا, اے حامان, میرے لیے ایک بالا خانہ بنا, شاید کہ میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے دروازے ہیں, اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں. مذاق اڑا رہا ہے موسیٰ کا کہ زمین پہ تو مجھے موسیٰ کا رب دکھا نہیں, ذرا میں آسمانوں پہ دیکھا ہوں, اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. آپ کو کوئی کہے نا آپ جھوٹی ہیں تو آپ کے کان سرخ ہو جائیں گے, موسیٰ کیا کیا باتیں سہ گئے اللہ کی بات بیان کرنے میں. اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی دی گئیں, یہ بھی نوٹ کیجیے. جب آپ کو اپنی برائیاں اچھی دکھیں تو آپ فرعون کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور آج سے روک دیا گیا, اور فرعون کی ہر ہیلا سازی تباہی میں ہی رہی, یعنی کسی کے لیے کھڑا کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے. اور اس ایماندار شخص نے کہا, اے میری قوم کے لوگو, گنیے ذرا کتنی دفعہ, یا قومی یا قومی, اے میری قوم کے لوگو, तुम सब मेरी पैरवी करो, ये नहीं कहा मेरा पल्लू पकड़ लो और मुझे बाबा बना के बिठा दो और मर जाऊं तो मेरी कब्र पे आकर फूल चढ़ाते रहना। तुम वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ और खुद भी कर रहा हूँ, या कौमी मेरी पैरवी करो। मैंने एक राह की तरफ तुम्हारी राहबरी करूँगा। जब अंदर हिदायत आती है ना, तो ये तड़प होती है कि कोई हमसे फ़ायदा ले ले, और जब लोग ना समझे तो दुनिया की बेसुबाती दिखाई जा रही है। या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयात दुनिया मता, ए मेरी कौम, ये हयात दुनिया मताए फ़ानी है, यकीन मानो कि करार और हमेशगी का घर तो आखरत ही है। जिसने गुनाह किया इसे तो बराबर बराबर ही का बदला है, और जिसने नेकी की है, ख्वाब वो मर्द हो या औरत, और वो ईमानदार हो तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और वहाँ बेशुमार रोजी पाएंगे। ए मेरी कौम, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे दोजख की तरफ बुला रहे हो। मोहब्बत में डूबा हुआ जुमला एक दोस्त का अपने दोस्तों के लिए, तुम मुझे दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफर करूं और इसके साथ शिर्क करूं जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें गालिब अल्लाह बख्शने वाले माबूद की तरफ दावत दे रहा हूं। देखिए, हर एक अपनी सी कोशिश करता है और जिसके पास जो होता है ना, वो उसी की दावत देता है। ला जरम अन्नमा तदूननी इलैह, ये यकीनी अमर है कि तुम मुझे जिसकी तरफ बुला रहे हो वो ना तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है और ना आखरत में, और ये भी यकीनी बात है कि हम सब का लौटना अल्लाह ताला की तरफ है और हद से गुजर जाने वाले ही यकीनन अहले दोजख हैं। बस आगे चल कर तुम मेरी बातों को याद करोगे। इसको हाईलाइट करें, हर साल ये जुमला मैं हाईलाइट करवाती हूँ, दिल पे लिखिएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े की बात और आंवले का अचार, इसका पता बुढ़ापे में जाके लगता है। इसी तरह याद रखिए, इखलास के साथ अल्लाह की तरफ बुलाने वालों की भी कदर अमूमन उनके जाने के बाद आती है। चाहे ये जुमला आप आइमाए कराम पे लगा लीजिए या मुहद्दसीन पे या नेक लोगों पे लगाएं। जिंदगी में लोगों ने उनको जेलों तक में डाल दिया, लेकिन बाद में आज नाम ले लेके रोते हैं। अम्बिया कराम के साथ भी तो यही हुआ, सामने नबी मौजूद और लोग बात न माने और बाद में उसके लिए हार बना बना कर फूलों और मोतियों के पेश कर दें। तो यही जुमला इधर है, फसतस्कुरू नमा अकूलु लकुम, बस आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। कब भला, जब मैं नहीं रहूंगा, फिर वो ना आएगा। आज भी वो बच्चे जो जिंदगी में माँ बाप की कदर नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते ना, बाद में छुप छुप के रोते हैं। फिर कहते हैं ना, कुछ जगह नहीं मिलती रोने को, कहाँ छुपे और रोए। आज तो लाड देखते हो ना, कदर नहीं है इतनी बड़ी नेमत और इतना केयरलेस एटीट्यूड। क्या तुमने दीन को समझा, खेल समझा, मजाक समझा? कोई बात नहीं, आगे जाकर याद करोगे। और वाउफ़विज़ो अमरी इलल्लाह, रह गया मेरा मामला, तो मैं तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। यकीनन अल्लाह ताला बंदों का निगरान है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने पास रखो, तुम्हें मुबारक, तुम ले लो। ये है वो चीज़ जिसको बंदा समझ जाए ना, तो बात बदल जाती है। पक्का ईमान बोल रहा है, ईमान के बगैर ये जुमले मुंह से निकलते नहीं। किसी काम को करते हुए इस जुमले को दिल से बांध लें, मैं अपना हर काम अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। करके तो देखिए, आपके छोटे छोटे हाथ अपने काम क्या करेंगे जो अल्लाह आपके हाथ बनेगा। हदीस है कि अल्लाह एक वक्त आता है बंदे के हाथ बन जाता है, उसके पाँव बन जाता है। हम अपने छोटे छोटे काम करने की कोशिशों में दीन के काम को यतीम और बेचारों मददगार छोड़ देते हैं। दिमाग ही नहीं खुलता, खुले कैसे, दिमाग तो कहीं और है। जिसमें दिल लगा होता है ना, उसके आइडियाज आते हैं, उसके लिए आप रोते हैं, उसके लिए गम करते हैं। पकाने का शौक है, देखिए दो पकाने खड़े हुए, चार पका के उठते हैं। कपड़े बनाने वालों के दिमाग कैसे लगते हैं, लेस डोरियां लेते हुए जाके देखिए। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इससे अबरा, क्योंकि आप अपने मामलों में खो गए। तो जिसने अल्लाह के हाथ में अपने मामले कर दिए, खुशियां गम उसके हाथ में दे दिए, अल्लाह उसकी मदद करता है। आप अपने बच्चे को अपनी माँ के हाथ में देकर कितना रिलैक्स फील करते हैं शादी हॉल में, क्या आप इसको संभालें, अब मैं इंजॉय करती हूँ। तो माँ जाने देगी आपके बच्चे को, गिरने देगी, छोड़ के आ जाएगी उधर? तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती को काम देखिए, फिर देखिए आपकी जहनी आज़ादी, फिर जियेंगे आप, बाकी तो बेगार है। और यकीनन अल्लाह ताला बंदों का निगरान है, हर बंदा अपने हालात खुद जाने। कहने वाले कह के चले जाएंगे, किसके माँ बाप आज जिंदा, समझाते हैं आज हमें कोई? तो याद रखिएगा, हिदायत की तरफ बुलाने वाले भी सिर्फ एक खास हद तक आपके लिए तड़प सकते हैं, इसके बाद आप जानिए और सब जाने। और आप देखिए कि इस मर्द मोमिन की निगाहें कितनी दूरस्त थी, किस चीज़ से इसने डराया। यौमत तलाक, मुलाकातों का दिन, क़यामत के नामों में से एक नाम है, शायद आपने कभी अरबी टेक्स्ट पे गौर ना किया इसलिए बता रही हूँ। क़यामत के दिन किसकी किससे मुलाकात होगी, जिस्मों की रूहों से, इंसान के अपने आमाल से, अम्बिया कराम से मुलाकातें, रिश्तेदारों से मुलाकातें। तो वो मुलाकात, एक होता है तल्लाक तोए से, ये ते से है, तनाद भी है, चीखो पुकार पड़ी होगी उस दिन। तो ज़रूरत इस बात की कि इंसान अपनी फिक्र करे, इस दुनिया के सफ़र से आगे जाकर हसरतें ही ना हो। तो फसा तस्करू नमा खोलो लखुम, सालेहीन की नाकदरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर इसकी सजा भुगतता है इंसान। और ये जुमले लिख लीजिए अलग से अपने पास। रजुलुन मोमिनुन, सच्चा दोस्त और खैरख्वाह था, क्या निशानियां हैं इसकी, आप अपने लिए भी ले सकते हैं इसको। कौन होता है रजुलुन मोमिन, कौन होता है सच्चा दोस्त और खैरख्वाह जो बुराई पे खामोश नहीं रहता। वो ये नहीं सोचता कि आप माइंड कर जाएंगी इसलिए मैं आपको ना टोकूं, फिर दर्द मंदी से तबलीग करता और अकीदे की इसलाह की कोशिशें करता और आने वाले अजाब से खबरदार करता, और फिर कोशिशें करके, काम करके अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देता। अब तुम जानो तुम्हारे काम। तो ज़रूरत इस बात की कैसे लोगों की कदर की जाए। इसी तरफ देखिए कि नेक दोस्तों के साथ मोहब्बत और इनकी सोहबत इख्तियार करना कैसा अमल है, अहादीस की रोशनी में देख लीजिए। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है, सिर्फ मोमिन शख्स की सोहबत इख्तियार करो और तेरा खाना सिर्फ मुत्तकी लोग खाएं, क्योंकि इससे आपके अंदर भी अच्छी बात आएगी, नेकों की सोहबत से नेकियों की रग़बत आएगी, बल्कि बाज़ नेकों की सोहबत बिगड़े हुओं को संवार देती है। इसी तरह आपने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस चाहिए कि तुम में से हर शख्स अपने दोस्त को देखे। तो मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना होता है। आपने फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। तो शायद सिर्फ मोहब्बतों की बुनियाद पे हम भी किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाएं जहां अच्छे अच्छे लोग होंगे। सही मुस्लिम की रिवायत 6586। आपने फरमाया, मोमिनों की मिसाल इनकी दोस्ती और इत्तेहाद और शफकत में ऐसी है जैसे एक बदन की, यानी सब मोमिन मिलकर एक कालिब यानी एक जिस्म की तरह हैं। बदन में जब कोई उज्व दर्द करता है तो सारा बदन इसमें शरीक हो जाता है, उसे नींद नहीं आती, बुखार आ जाता है। तो अल्लाह करे हमारे दिल आपस में ऐसे जुड़ जाएं। अब देखिए इस मर्द मोमिन का अंजाम क्या हुआ। उसने तो कहकर अपना मामला कर दिया, फबकाहुल्लाहु सैयाति मा मकरू वहा कभी आलि फिरौन सूउल अज़ाब। बस इसे अल्लाह ताला ने तमाम बदियों से महफूज रख लिया जो उन्होंने सोच रखी थी। ये है तोहफा अल्लाह के हाथों में अपना काम करने का। हर मामला अल्लाह को सौंपा, अल्लाह ने उसको शर से भी बचा लिया, बुराइयों से भी बचा लिया, और फिरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब उलट पड़ा। आँख है जिसके सामने ये अरसुब और शाम लाए जाते हैं, ये है आलमे बरज़ख़, कब्र के अजाब की दलील है ये आयत। उनकी कब्र में सुबह शाम अजाब पेश किया जाता है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, फरमान होगा फिरौनियों को सख्त तरीन अजाब में डाल दिया जाए। तो क्या सीखा इन आयात से? कुफार की दोबारा जिंदगी की ला हासिल आरजू, दोबारा ख्वाहिश भी रखेंगे तो नहीं दाखिल किए जाएंगे। एक मर्द मोमिन की फिरौन को नसीहत और उसके साथियों को, कौमे फिरौन के मर्द मोमिन की सह पारा नसीहत। तीन हिस्से थे इसकी नसीहत के। हक पहुंचाकर बाकी मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया, आप भी कर दीजिए, और फिरौन का बदतरीन अजाब। और आगे अब जहन्नम के किनारों पे खड़े लोगों की बातें हैं कि जब लोग दुनिया में कदर नहीं करते तो वहां जाकर क्या होगा। एक दूसरे से झगड़े करेंगे, लड़ेंगे। 48 आयत देखिएगा, قال الذين استكبروا إنا كل فيها। और जबकि दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग तकब्बुर करने वालों से जिनके ये ताबे थे कहेंगे, हम तो तुम्हारे पैरोकार थे, यानी जो तुम करते थे हम भी वही करते थे। मुराद ये कि हम कौन सी अपनी अकल इस्तेमाल करते थे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं, बस ये था कि बाप दादा ये कुछ कह रहे थे हम भी आके माथे टेकने लग जाते हैं, ये मुराद है। तो क्या अब तुम हमसे इस आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? वो बड़े लोग जवाब देंगे, हम तो सभी इस आँख में हैं, अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसले कर चुका। यानी हम क्या करें, हम तो खुद फंसे हुए। और तमाम जहन्नमी मिलकर जहन्नम के दारोगों से कहेंगे, तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो ना कि वो किसी दिन तो हमारे अजाब में कमी कर दे, एक दिन की ब्रेक तो दे दे हमें। जल जल के राख हो रहे हैं, और थोड़ा सा तो टेम्परेचर लो कर दें। देखिए मोमन लोग फिर बीच के लोगों को रीच करते हैं जब आगे से कोई उनकी बात ना सुनी जाए। यहाँ भी फरिश्तों को कह रहे हैं, जहन्नुम के दारोगों को, कि ज़रा अल्लाह को हमारी सिफारिश तो कर दो। वो जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मोजज़े लेकर नहीं आए थे? सोचिए, जब कोई आपके पास रसूल का मोजज़ा लेकर आ जाए और जवाब ना दे तो क्या होगा? वो कहेंगे क्यों नहीं, वो कहेंगे फिर तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ महज बेअसर और बेराह है, यानी जो मर्जी पुकार लो फायदा कोई नहीं होना। तो क्या पता चला? फिरौन और सोहबते सवाले, फिरौन के अच्छे लोगों से मदद, यानी मूसा हारून और फिरौनी मर्द हक से। दीन हक और तौहीद की सच्ची दावत फिरौन को दी गई, शायद कि वो ईमान ले आए। यह है सच्ची दावत का एक इजहार। फिर अल्लाह पे तवक्कुल देखिए कि ख्वाहिशात नफ्स को छोड़कर अल्लाह पर तवक्कुल, आजजी और इताअत रसूल इख्तियार करे। नबी का दिफा, फिरौनी साले मर्द ने अपनी कौम की इसलाह की और नबी के दिफा की कोशिश की, और फिर अल्लाह का अजाब आया। कब? कौम को अल्लाह के अजाब और पकड़ का खौफ इसने दिलाया और मकज़ूब कौमों से इबरत दिलाई, लेकिन देख लीजिए जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाना था नहीं उठाया। तो आगे एक मजमूई बात कर दी गई हर दौर के नबी की तरह, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद जिंदगानी दुनिया में भी करेंगे, और इस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को इनकी माजरत कुछ फायदा न देगी, इनके लिए लानत ही होगी और इनके लिए बुरा घर होगा। अल्लाह इस बुरे अंजाम से बचाए सबको। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायतनामा अता फरमाया और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया कि वो हिदायत और नसीहत थी अक्लमंदों के लिए। पस है नबी आप सब्र कीजिए कि अल्लाह का वादा बिला शक को शुबा सच्चा ही है, और आप अपनी लग्जिशों की माफ़ी मांगते रहिए और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम बयान करते रहिए। जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के ना होने के आयात इलाही में झगड़ा करते हैं, इनके दिलों में सिवाय निरी बड़ाई के और कुछ नहीं। तकब्बुर की वजह से लोगों को अल्लाह के हुक्म मानने मुश्किल लगते हैं, वो इस तक पहुंचने वाले ही नहीं। सो तो अल्लाह की पनाह मांगता रहे, बेशक वो पूरा सुनने वाला और सबसे ज्यादा देखने वाला है। आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये और बात है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं। चंद सेकंड सोचिए, बेइल्मी की बात और अच्छे बुरे दोस्तों का तकाबुल साथ साथ चल रहा है। अंधा बीना बराबर नहीं, ना वो लोग जो ईमान लाए और भले काम किए बदकारों के बराबर हैं। तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। क़यामत बिल यकीन और बिला शुबा आने वाली है, लेकिन ये और बात है कि बहुत से लोग ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। कौन दुआएं कबूल करता है? अल्लाह ताला करता है। वक़ाल रब्बुकुम अदूनी अस्तजिब लकुम। लेकिन इसके बरक्स, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, यकीन मानो जो लोग मेरी इबादत से खुद सरी करते हैं, वो अभी अभी जलील होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। तो क्या पता चला कि बुरे इंसान से दुआ भी नहीं होती, चूंकि इल्म नहीं था। हमने देखा कि अंधा और बीना बराबर नहीं। आप देख लीजिए, अंधा कौन है इधर जिसको बुरी सोहबत मिल गई? नतीजा क्या निकला? मुतकब्बिर बना, बेइल्म ठहरा और झगड़ालू बना। इसके बरक्स देखने वाला यहाँ वो है जिसकी सोहबत सालेहीन अच्छे लोगों में उठता बैठता है, तो उसका नतीजा क्या निकला? मुसलिह बना, इसलाहकार, साबिर होता है ऐसा इंसान और खैर ख्वाह बनता है। अल्लाह क्या हुक्म देते हैं? वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। आज के दौर का एक फितना, खुद अल्लाह से बराह रास्त दुआ मांगते भी नहीं, दूसरों को दुआ के लिए कहते हैं, हालांकि फरिश्तों की दुआएं ले सकते थे अल्लाह के रस्तों में चल के। तो इसको शिर्क फित दुआ कहते हैं। ताल्लुक बिल्ला की कमजोरी को जाहिर करती है ये चीज़। आपका अपना ताल्लुक बिगड़ा हो तो आप तो अपने शोहर से ना मांगे, अल्लाह से मांगना तो बड़ी बात है। तो जो लोग अल्लाह से नहीं मांगते, मान लें कि उनका ताल्लुक बिल्ला कमजोर है। अल्लाह ताला कायनात में फैली हुई निशानियां दिखाकर बताते हैं कि देखो, जब मैं इतने काम कर रहा हूं तो क्या मैं तुम्हारे काम नहीं कर सकता? अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल्लैला लितस्कुनू फीह, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम इसमें आराम हासिल करो, और दिन को देखने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़े फजलो करम वाला है। लेकिन अक्सर लोग ना शुक्री करते हैं, यानी शुक्र गुजार ही नहीं करते। आप नोट करते हैं अक्सर अक्सर, तो अक्सरियत के पीछे ना भागिए। बस जो बुरी दोस्तियां हमें अक्सरियत के पीछे भागने के शौक में भी बिगाड़ देती हैं। तो मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी। यही अल्लाह है तुम सब करब हर चीज का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर कहाँ तुम फिरे जाते हो। इस तरह वो लोग भी फेरे जाते हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बना दिया, और तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और तुम्हें उम्दा उम्दा चीजें खाने को अता फरमाई। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, बस बहुत बरकतों वाला अल्लाह है, सारे जहान की परवरिश करने वाला। वो जिंदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम खालिस इसी की इबादत करते हुए इसे पुकारो। तमाम खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। आप कह दीजिए मुझे इनकी इबादत से रोक दिया गया जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो, इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें पहुंच चुकी हैं। या नोट कीजिए, हो सकता है पिछली जिंदगी में इंसान गलत काम करता हो, इवन शिर्क तक, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी सोहबत मिल जाए, पिछली चीजों की बुराई खुल जाए, एक एक करके छोड़ दीजिए। मुश्किल लगे तो अल्लाह से दुआ कीजिए। इसीलिए फरमाया मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं तमाम जहानों के रब का ताबे फरमान हो जाऊं। वो वही है जिसने तुम्हें मट्टी से, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से पैदा किया, फिर वो तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी कुव्वत को पहुंच जाओ, लाइफ स्पैन ऑफ अ इंसान, फिर बूढ़े हो जाओ, तुम में से बास इससे पहले ही फौत हो जाते हैं। वो तुम्हें छोड़ देता है ताकि तुम मुद्दत मुअय्यन तक पहुंच जाओ और ताकि तुम समझ बूझ लो। एक इंसान जवानी बचपन की सारी मंजिलें तय करता हुआ बुढ़ापे तक पहुंच जाए और उसको सिर्फ दुआ ना मांगना आए, कितनी बदबख्ती और कितनी महरूमी की बात है। तो शिर्क फिर दुआ अमूमन देखिए बुढ़ापे तक नहीं छुटता। बहुत सारे लोग अल्लाह से अगर शुरू से नहीं मांग रहे, अल्लाह का हक नहीं दे रहे, तो वो बूढ़े होकर तो और भी पक्के हो जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसी तमाम दोस्तियाँ, ऐसी सोहबतें जो हमें गैर अल्लाह से मांगने की तरफ माइल करें, उससे अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे। या इंसान की ज़िंदगी का जो सफ़र है ज़रा उसमें देखिएगा, और ये ज़िंदगी का सफ़र हमें गौर व फिक्र दिलाता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो बुरी सोहबतों में मुब्तला हो चुके हैं, अपने ही बारे में गौर व फिक्र नहीं करते, तो उनको गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है। इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ मट्टी और नुतफे से होता है, फिर खून का लोथड़ा बनता है, फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ बच्चे की शक्ल में ढलता है, फिर वो बच्चा आपके हाथों में आता है, और देखते ही देखते वो जवानी और पूरी कुव्वत यानी शाब में पहुंच जाता है, और अभी पता भी नहीं चला खुद को कि जवानी आई है, कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे कमजोरियां और बुढ़ापा दिखने लगता है। अपने बूढ़ों को देख लीजिए, अगर आप अभी बूढ़े नहीं हैं तो बिल्कुल आप अपनी माँ जैसी हो जाएंगी अगर आप उनकी उम्र तक पहुँच गई, और आप अपने बाप जैसे लगेंगे जैसे आज वो लगते हैं। अपने बूढ़ों में अपना मुस्तकबिल ढूंढिएगा, वो भी घुटनों पे हाथ रखते हैं, कल आप और मैं भी रखेंगे, कल उनके भी चेहरे पे झुरियाँ थी, हमें भी दिखेंगी अगर अभी नहीं दिख रही तो। और एक वक्त आएगा कि वफात और मुय्यन मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, और आप और मैं अपना लाइफ स्पैन पूरा करके कब्र में डाल दिए जाएंगे। इतना कुछ दिया मालिक ने और उसी को पहचान करना आए, उसी की बात बुझल लगी, जिसकी सिफात पढ़ते सुनते दिल खिल जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसी रब को ना तुम पहचान सके, सारी दुनिया को पहचान कर आगे, तो अपने हाल पे अफसोस करो। वो ही है जो जिलाता है यानी जिंदा करता है और मार डालता है, फिर जब वो किसी काम का करना मुकर्रर करता है तो इसे सिर्फ कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। क्या तूने नहीं देखा इनको जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, वो कहाँ फेर दिए जाते हैं। जिन लोगों ने किताब को झुटलाया और इसे भी जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा है, बस इन्हें अभी अभी हकीकते हाल मालूम हो जाएगी। तो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार और सालेह बंदों को कायनात पे गौर व फिक्र की दावत है। इधर रात आराम के लिए, दिन माश के लिए रोशन है, यानी उसने आपके आराम का भी ख्याल किया और माश का भी, फिर ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और आसमान को छत बनाया ताकि आप पुरसकून होकर काम करें, अच्छी सूरतें दी, उम्दा खुराक अता की ताकि शुक्र कीजिए, और जो नहीं मानते फिर कल उनके साथ क्या होने वाला है। इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम वस्सलासिल, जबकि इनकी गर्दनों में तोक होंगे और जंजीरें होंगी, घसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में और फिर जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम शरीक करते थे वो कहाँ हैं। वो सारी मसरूफियात थी जो तुम्हारी जिंदगी की कामयाबियां, सक्सेस स्टोरीज आज किधर हैं? जो अल्लाह के सिवा थे वो किधर गए? वो कहेंगे वो तो हमसे बहक गए, बल्कि हम तो इससे पहले किसी को भी पुकारते ही ना थे। कभी झूठ बोलेंगे, कभी कुछ करेंगे, सटपट आ गए। अल्लाह ताला कुफार को इसी तरह गुमराह करता है। ये बदला है इस चीज़ का जो तुम जमीन में नाहक फूले न समाते थे और बेजा इतराते फिरते थे। अब आओ जहन्नुम में हमेशा रहने के लिए, इसके दरवाजों में दाखिल हो जाओ। क्या ही बुरी जगह है तकब्बुर करने वालों की। बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा कतन सच्चा है। इन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं इनमें से कुछ हम आपको दिखलाएं, या इससे पहले हम आपको वफात दे दें, इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है। यानी आपसे ऐसी बातें करने वाले खुद कितने दिन इस दुनिया में रहेंगे? यकीनन हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिनमें से बास के वाक्यात हम आपको बयान कर चुके, और इनमें से बास के किस्से तो हमने आपको बयान ही नहीं किए। और किसी रसूल की ये मकदूर यानी ताकत और कुदरत ना थी कि कोई मुझसे अल्लाह की इजाज़त के बगैर ले आए या ला सके। फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा तो हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और इस जगह अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, जिनमें से बास पर तुम सवार होते हो और बास को तुम खाते हो। और भी तुम्हारे लिए इनमें बहुत से नफ़े हैं, और ताकि अपने सीनों में छुपी हुई हाजतों को इन्हीं पर सवार करके तुम हासिल कर लो, और इन चौपायों पर और कश्तियों पर सवार कराए जाते हो। अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता जा रहा है, बस तुम अल्लाह की किन किन निशानियों के मुनकर बनते रहोगे? जरा सा गौर कीजिएगा, अल्लाह की नेमतों से भरी हुई सूरत है। क्या नेमतें चौपाए और कश्तियां! नेमतों का शुक्र कीजिए या ना शुक्री कर लीजिए, हमसे मतलूब क्या के शुक्र कीजिए। मसलन चौपाए, सवारी, खुराक और कश्तियों में फायदे हैं, इन नेमतों से फायदा उठाइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इसके बरक्स आप देखिए कि इन नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री क्या है, कि ना तो इन नेमतों को बांटा जाए और ज़मीन पर सफ़र करके भी इबरत हासिल न की जाए। तो बंदा मोमिन एक तरफ कुरान पढ़ता है और दूसरी तरफ कायनात को पढ़ता है, और कुरान अल्लाह का कौल है और कायनात अल्लाह का फेल है, और उसके कौल और फेल में ज़रा सा भी तसाद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला आपको मुझे गौर करने की दावत देते हैं। पिछली कौमों के ऊपर गौर करते हुए अब तारीख पे एक नज़र। अफलम यसीरु फिल अर्दि फयन्ज़ुरु कैफ़ कान आक़िबतुल लसीना मिन क़ब्लिहिम। क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर कर अपने से पहलों का अंजाम नहीं देखा, जो इनसे तादाद में बहुत ज़्यादा थे, क़ुव्वत में सख्त, और ज़मीन में बहुत सारी यादगारें छोड़ी थी? इनके किए कामों ने इन्हें कुछ भी फ़ायदा ना दिया, सारी तरक्की हाथ में रह गई। बस जब कभी इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए तो ये अपने पास के इल्म पर इतराने लगे। बिलाखिर जिस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे थे वही इन पर उलट पड़ी। नोट कीजिएगा, दुनियावी इल्म का गर्रा, ये भी आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना है। पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, डिग्रीज और यूनिवर्सिटीज और उनके स्टिकर्स गाड़ियों में, और चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा भी ना आता हो, नमाज का ना पता हो, मखारिज गलत हो, क्या करना है दुनिया के इतने पढ़े लिखे बच्चों को? लाखों कमाने वाले, आपकी मुट्ठियों में लाखों देने वाले बच्चे, अगर दीन के अलिफ बे ना जाने तो क्या लिया आपने? बस हमारा साहब देखते ही कहने लगे कि अल्लाह वाहिद पर हम ईमान लाए, और जिन जिन को हम इसका शरीक बना रहे थे हमने इन सब का इनकार कर दिया, सब झूठे सहारे उस दिन खत्म। लेकिन हमारे अजाब को देख लेने के बाद इनके ईमान ने इनको कोई नफा ना दिया। अल्लाह ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है जो इसके बंदों में चला आ रहा है, और इस जगह काफिर खराब व खस्ता हुए। वह खुसरा होना अलीकल काफिरून, किस खबर के साथ सूरत पूरी हुई है? तो खसारे हैं, तबाहियां हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में अच्छी दोस्तियों और अच्छी सोहबतों से फायदा ना उठाया और अपने आप को बुरे माहौल से ना निकाला। क्या सीखा हमने सूरत मोमिन की इन आयतों में? रसूलों और अहले ईमान को दुनिया आखरत में मदद की बिशारत है। कल भी अल्लाह ने ईमान वालों की मदद की, आज भी करेगा। फिर दुआ की हिदायत और कबूलियत के वादे देखे, उसी से मांगो, शिर्क ना करो दुआओं में। अल्लाह के एहसानात और इनामात का तذکرہ देखा, कुफार को जहन्नम के अजाब और तौक और सलासिल यानी रस्सियां और तौक और संगलियां जो उनके गलों में होंगी उसकी वईद दी गई, और नज़ूल अजाब के वक्त का ईमान बेफायदा। आज वक्त है, कल मौत के वक्त अगर कलमा पढ़ा तो काम नहीं होगा। आगे है सूरत फुसिलत, जिसको हामीम सजदा भी कहते हैं। 41 नंबर की सूरत है, 54 आयते हैं। इसमें भी इस्तकामत फिद दीन का सबक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिया, अरबिया लिकौमी यालमून। ये उतारी हुई है बहुत मेहरबान और बड़े रहम वाले की तरफ से। तारीफें हैं किताब की, ऐसी किताब जिसकी आयतों की वाज़ तफसील की गई इस हाल में कि कुरान अरबी जुबान में है, इस कौम के लिए जो जानती है। कौन सी थी वो? अरब कौम थी। आपको मुझे समझ आता है इस कुरान का कुछ मतलब? तो मेहनत कीजिए, क्या करें, आपको मुझे अरबी नहीं आती और अरबी में कलाम है, तो सीखिए फिर सोहबते सालेहीन लीजिए जो आपको कुरान दोस्त बनाए। कुरान का इल्म लेना है, बचपन से सुनते आए, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस पे चलाना मुझको। तो आज ज़रूरत है कुरान के इल्म को लेने की और सोहबते सालेहीन की। कुरान मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और समझने के लिए आसान है, इसका बाज़ाब्ता इल्म लेना। याद रखिए, कुरान को सीखने के दो दर्जे होते हैं, एक है तज़क्कुर और एक है तदब्बुर। तज़क्कुर बेसिक लेवल है, बहुत आसान है, हर आम बंदा भी समझ जाता है। हाँ, तदब्बुर मुश्किल है। अफला या तदब्बरून अल कुरान, में देखा, आगे भी आएगा ये जुमला सूरत मोहम्मद में। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पलटना पड़ता है, एक एक पारे को बीसियों बार खंगालना पड़ता है, फिर कहीं जाकर उस पर तदब्बुर होता है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे दावत देता है कि अब अगली जिंदगी में कुछ वक्त कुरान के लिए लगाइए। जब आप सबीरुल जन्नाह कोर्स शुरू करेंगे ना, कुरान का वो पारा जो उस वक्त चल रहा होगा, आपका दी बेस्ट फ्रेंड होगा। अक्सर लोग किचन में साथ रखते, सरहाने के पास। एक सिस्टर ने कहा, बस वॉशरूम में जाते हुए बाहर होता है मेरे, इतना प्यारा साथ बनता है कि वही बात है, अंतजलिल कुरान अलअजीम अरबी या कल्बी व नूरा सदरी। तो क्या चाहिए गुनाहों से हिजरत और इस पे इस्तकामत के लिए? इल्म वाले साले लोगों की सोहबत इख्तियार करना। हर बंदा अपने लिए दुआ करे, जहाँ से भी बैठ के सुन रहा है, ऑनलाइन या ऑन साइट, जहाँ से मुझे मौका मिला मैंने इस साल कुरान को सीखना है। और अगले दौरे कुरान से पहले कम अज़ कम 10 पारे मैंने लफ्जी तर्जमे के अपने सीने में उंडेलने हैं। करके देखिए, नीयत करना आपका काम है, मदद अल्लाह की आती है। आपका मेरा तो बस ही नहीं है, ये अल्लाह ही करवाता है, सच बताऊं, बंदे के इख्तियार में कुछ नहीं। और फिर और खुशखबरियां सुन लीजिए कुरान की, बशीरों व नज़ीरा, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला। ये कब होगा? जब समझ आएगा। लोग तो जहन्नुम के आयतों पे वाह वाह सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, और हम रोते भी नहीं कुरान पढ़ के, हमारे दिल भी नहीं खिलते कुरान पढ़ के, क्योंकि समझ जो नहीं आता। फिर भी इनकी अक्सरियत ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं, और उन्होंने कहा कि तू जिस चीज की तरफ हमें बुला रहा है, हमारे दिल तो इससे पर्दे में है। ये है वो स्टबननेस का पर्दा। लैंग्वेज नहीं मिलती, वेव लेंथ नहीं मिलती, तुम्हारा हमें अंदाज नहीं अच्छा लगता, मसला ये। वो फलान है, वो ऐसा करते हैं इसलिए नहीं मैं पढ़ रही, वो बहुत ऐसी बातें करते हैं, नहीं वो बड़ी नरम बात है, वो बड़ी मुश्किल है, उनकी इंग्लिश नहीं अच्छी, उनकी उर्दू नहीं अच्छी, उनकी नॉर्वेजियन नहीं अच्छी, ये कहते हैं लोग इस दावत के जवाब में। और हमारे कानों में गरानी है, बोझ पड़ता है, बंद करो। और हम में और तुम में एक हिजाब है, ये है वेव लेंथ ना मिलना, कर्टन है। आप हमारी मजबूरियां नहीं समझते, हमें आपकी लाइफस्टाइल नहीं समझ आते। अच्छा, तो अब अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। आप कह दीजिए, मैं तुम ही जैसा इंसान हूँ, मुझ पर वही नाजिल की जाती है कि तुम सब का माबूद एक अल्लाह है, सो तुम इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और इससे गुनाहों की माफ़ी चाहो। और इन मुशरिकों के लिए बड़ी ही खराबी है जो ज़कात नहीं देते। नोट कीजिएगा, यहाँ मुशरिक किस किस को कहा जा रहा है। तो अपनी ज़कातों की फ़िक्र कीजिए, चंद दिन रमज़ान के इसमें देंगे तो इंशाल्लाह अजर ज़्यादा है। और आखरत के भी मुनकर ही रहते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और भले काम करें, इनके लिए ना खत्म होने वाला अजर है। आप कह दीजिए, क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम इसके शरीक मुकर्रर करते हो, जिसने दो दो दिन में जमीन पैदा कर दी? सारे जहानों का परवरदिगार वही है, और इसने जमीन में और इसके ऊपर से पहाड़ काट दिए और इसमें बरकत रख दी और इसमें रहने वालों की गजाएं भी तजवीज की, इसी में कर दी, गजाओं की तजवीज़ भी इसी में कर दी, सिर्फ 4 दिन में। देखिए, ये ब्रेक डाउन है पूरे 6 दिनों में जो कायनात बनी उसका। हम कहते थे अल्लाह ताला ये दुनिया 6 दिन में बना दी, तो उसकी डिटेल्स हैं इधर, अगर किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट हो तो। सिर्फ 4 दिन में और ज़रूरतमंदों के लिए यकसान तौर पर। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वह धुआं सा था। बस इसे और ज़मीन से फरमाया, तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से आओ। दोनों ने अर्ज़ किया, हम बखुशी हाजिर हैं। आज आप और मैं भी यही कह दें, अब रोते धोते नहीं आएंगे स्कूल। तौन करहन नहीं, सिर्फ तौन तौन। खुशी खुशी काम कीजिए, खुशी खुशी आइए इन जगहों पे, अल्लाह आपके सारे कामों को अपने हाथ में लेगा। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिया और आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी। और अपने आसमान ने दुनिया को चिरागों से जीनत दी और निगेबानी की, ये तदबीर अल्लाह गालिब व दाना की है। अब ये रू गर्दा हो तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस कड़क से डराता हूँ जो मिसल आदियों और समूदियों की कड़क के होगी, लेकिन साथ साथ खौफ साथ साथ उम्मीद। इनके पास जब इनके आगे पीछे से पैगंबर आए तो तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्तों को भेज देता, हम तो तुम्हारी रिसालत के बिल्कुल ही मुनकर हैं। अब कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे ज्यादा जोरावर कौन है। जरा इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये अपने दौर की बड़ी कुव्वतें थी। बड़ा मान था इनको अपनी तरक्की पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे, बड़े बड़े इनके हाथ थे। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, है कोई हमसे कुव्वत में आजा, कोई हमसे हो तो आगे तो आए। आज का लॉकडाउन ने इस दावे को तोड़ दिया, क्यामत के दिन तो क्या होगा। तो याद रखिए, सुपर के ऊपर सुप्रीम कुव्वत का कंट्रोल हर दौर में रहा। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़हुम, क्या इन्हें ये नजर ना आया कि जिसने इन्हें पैदा किया वो इनसे बहुत ज्यादा जोरावर है और वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। बिलाहिर हमने इन पर एक तेज आंधी मनहूस दिनों में भेज दी कि इन्हें दुनियावी जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दें, और यकीन मानो कि आखिरत का अजाब इससे बहुत ज्यादा रसवाई वाला है और वो मदद नहीं किए जाएंगे। रहे कौम समूद, सो हमने इनकी भी राहबरी की, यानी हर एक को पहले समझाया, फिर ना माने तो फिर पकड़ लिया, फिर भी उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी। हाईलाइट करिएगा, हिदायत का मौका है और इंसान आंखें बंद कर दे, अंधा हो जाए, तो फिर अल्लाह उनको जबरदस्ती तो हिदायत पे नहीं लाएगा। जिस बिना पर इन्हें जिल्लत के अजाब की कड़क ने इनके करतूतों के बायस पकड़ लिया था, इसके बरक्स। और हाँ, ईमानदार और पारसों को हमने बाल बाल बचा लिया। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमें भी बाल बाल ही बचा दे। अब आगे क्यामत का दिन, व यौम युक्षर वादाउल्लाहिलन्नार फौम यूज़ाउन, जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ लाए जाएंगे और इन सब को जमा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नुम के पास आ जाएंगे, इन पर इनके कान और इनकी आंखें और इनकी खालें इनके आमाल की गवाहियां देंगी। सूरह यासीन में पढ़ के आए, हदीस भी सुनकर आए हैं। ये हमारे स्पाइज हैं, जासूस हैं, ये आपकी मेरी हर चीज नोट कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन हमारी शिकायतें लगाएंगे, और जब खालें बोलेंगी ना तो बंदा जवाब में क्या कहेगा, ये अपनी खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी। वो जवाब देंगी, हमें इस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई, यानी बोलने की कुव्वत अता फरमाई। जो जुबान के लोथड़े को बुलवा सकता है वो आपकी मेरी स्किन को नहीं बुलवाएगा। क्या कहेंगे, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी है, इसी ने तुम्हें अव्वल मरतबा पैदा किया और इसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और तुम अपनी बदामालियां इस वजह से पोशीदा रखते थे ना कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगी। हाँ, तुम ये समझते रहे कि तुम जो कुछ कर रहे हो इसमें से बहुत से अमाल से अल्लाह बेखबर है। यही तो गलत फहमी होती है। तो याद रखिए, आज़ार खालों की गवाही आयत 21-22 में। ज़रा सा सोचिए कि कल हमारे हाथ, हमारी खालें, हमारे बॉडी ऑर्गन्स क्या गवाहियाँ देंगे क़यामत के मैदान में। तौरे हाजिर का फितना है कि कुरान की बजाय मोबाइल से दोस्ती हैं। मोबाइल पे आंखें क्या देखती, टच क्या होते, क्लिक्स किस पे लगते, खाल क्या क्या देखती, सुनती, करती, गैर अखलाकी मैसेजेस, तस्वीरें, गाने, नाजायज वीडियोस अपलोड करना और डाउनलोड करना, छुप छुप के उनको देखना और उनको इंजॉय करना और फिर घबराना, फजूल वक्त ज़ाया करने वाले काम करना, और सेल्फी कल्चर, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कल क़यामत के दिन हमारे फ़ोन्स पर, हमारे टैब्स पर, हमारे लैपटॉप्स पर और हमारी बिग स्क्रीनों पर हमारे खिलाफ गवाहियां दे रहा होगा। पूछिए खुद से, कब आखिरी बार कुरान को मोहब्बत से पकड़ा था, कब तन्हाई में इस पर तदब्बुर किया था। हमारे अज़ा हमारे हक में गवाही देंगे या हमारे खिलाफ, हम अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं। बच्चों को अगर ये चीज़ें दें तो फिर अनअटेंडेड ना छोड़िए। तुम्हारी इस बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दिया और बिलाखिर तुम नुकसान वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करें तो भी इनका ठिकाना जहन्नुम है, और अगर ये माफ़ी के ख्वास्तगार हों तो माफ़ी फिर भी ना दिए जाएंगे, क्योंकि वो माफ़ियों का वक्त दुनिया में था और उस वक्त तो न जाने तुम किन कामों में मसरूफ़ थे। जब बच्चे बड़े होते ना फिर समझ आता है कि हमने अपनी जवानियों में क्या मस्तियाँ की हैं, और हमने इनके कुछ हमनशीन मुकर्रर कर रखे थे जिन्होंने इनके अगले पिछले अमाल इनकी निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे, और इनके हक में भी अल्लाह ताला का कौल इन उम्मतों के साथ पूरा हुआ जो इनसे पहले जिन और इंसानों की गुजर चुकी हैं। यकीनन वो नुकसान वाले साबित हुए, कर चुके आए थे तदब्बुर में, आज की आयत यही थी। तो क्या पता चला कि दोस्ती के मुतल्लिक अल्लाह ताला की कुछ नसीहतें हिदायतें हैं और कुछ अल्लाह के नबी सल्लम की। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वसबिर नफ्स का माल्लजीना यदून रब्बहुम बिलगदाती वलअशी युरीदून वजह। आज जुमा है तो आप जुमे में सूरह कहफ में आयत पढ़ भी लेंगे, आयत 28 है। ऐ मेरे बंदे, तू अपने आप को इन लोगों की संगत में जमाए रख जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, इसकी रजा की तलबगार रहते हैं। तो ये अल्लाह की नसीहत है आपके मेरे लिए, क्या अब हम सुबह शाम ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, सूरत माईदा के आखिर में 119 आयत थी। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, रास बाजों की माइयत अख्तियार करो। इसी तरह सूरत अनफाल में भी है, यहाँ उसी का रेफरेंस है। हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की नसीहत आपको मुझे अच्छी दोस्तियों पे माइल करने के लिए। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर शख्स देखे कि वो किस से दोस्ती करता है। अबू दाऊद की रिवायत 4833। एक और रिवायत है सिलसिला तो सही है कि 2496। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के बास बंदे ऐसे भी हैं जो अम्बिया हैं ना शोहदा, लेकिन शोहदा और अम्बिया इन पर रश करेंगे, इनकी वजह इनका अल्लाह ताला से क़ुर्ब और इनके साथ मजलिस होगी। एक अराबी अपने घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगे, अल्लाह के रसूल हमारे लिए इनकी सिफात बयान करें और इनको वाज़ेह करें। आपने फरमाया, ये गैर मारूफ कबाइल के नामालूम नसब लोग होंगे, यानी फेमस नहीं है, दे आर नॉट सो पॉपुलर, जो अल्लाह ताला के लिए बाहम दोस्ती रखेंगे और इसी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके लिए नूर के मिंबर रखेगा, दूसरे लोग खौफ ज़दा होंगे लेकिन इनको कोई खौफ नहीं होगा, और यही लोग अल्लाह ताला के औलिया हैं कि फरमान इलाही के मुताबिक ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन पर खौफ होगा ना गमगीन होंगे। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल करे। सवाल पैदा होता है कि इतनी खूबियाँ, इतना कुछ जान लिया हमने अच्छी सोहबतों और अच्छी महफिलों का, फिर भी लोग इससे दूर क्यों रहते हैं? वजह, औलाद की तरबियत में गफलत, यानी वालदैन ने औलाद को ये रास्ते दिखाए नहीं, फिर बड़े हुए तो गुनाहों की तरफ मेलान हो गया, थोड़े से और बड़े हुए तो बुरी सोहबत मिल गई स्कूलों कॉलेजों में, और आगे गए तो कुरान और सुन्नत से मज़ीद दूर होते गए, पढ़ाइयों में खो गए, फिर बुरे अमाल किए और उसकी सज़ा मिली कुछ ना मिली, और जब बुरे अमाल की सज़ा के तौर पर नेकियों से दूर हुए तो ये अल्लाह की तरफ से पकड़ थी। फिर एक बहुत बड़ी वजह शैतान है जो हमेशा ऐसी चीज़ों को खूबसूरत करके दिखाता है। फिर एक बहुत बड़ी वजह आती है हराम कमाई, ये उसकी कबाखते हैं। जब पेट में लुकमे ठीक नहीं होते तो कुरान की तरफ भागने को दिल नहीं करता, नेकियां करने को दिल नहीं चाहता, इबादत होती नहीं है। फिर इस तरह वालदैन की हद से ज़्यादा सख्ती या हद से ज़्यादा छूट, तो ये सारे फितने बनकर आज बुरी सोहबतें गली गली घर घर, अल्लाह नस्लों की हिफाजत कर दे। और अब आगे सुनिए ज़रा गैरों के आपके इस कुरान के बारे में इरादे। पूरे पारे में ये पढ़ते आए कि कुरान के करीब बहुत दोस्तियाँ सुनो करो, लेकिन फिर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या रुकावटें हैं, कौन लोग हैं जो आने नहीं देते, उसका जिक्र है अब आयत नंबर 26 में। वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मउ लिहाज़ल कुरानी वलग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून, और कुफ़ार ने कहा, इस कुरान की सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक्त और बेहुदा गोई करो, क्या जबकि तुम ग़ालिब आ जाओ। बस यकीनन हम इन काफिरों को सख्त अजाब का मजा चखाएंगे और इन्हें इनके बदतरीन अमाल का बदला ज़रूर ज़रूर देंगे। अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा यही दोजख की आग है जिसमें वो हमेशगी का घर है। ये बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। अब बताइए, क्या वो ना सुनाने में कामयाब है या हम सुनाने में कामयाब है? यहाँ अदाउल्लाह जो अल्लाह के दुश्मन है, शैतान के कुछ साथी जिन्नों इंस में से, बुरे दोस्त जो बुरे अमाल को मुजयन करते हैं, देखिए उनकी कोशिशें क्या हैं, और आज आपकी मेरी इस कुरान और इस्लाम को फैलाने में क्या कोशिशें हैं, आटे में नमक है सिर्फ। शैतान के दोस्त क्या करते हैं? दुनिया की जेबो जीनत को मुजयन करके दीन की राह से भटकाते हैं। छोटी छोटी चीज़ दुनिया की चमकती दमकती दिखती है, फिर लोग ख्वाहिशात नफ्स में मशगूल होकर अल्लाह को भूल जाते हैं। ये बुरे दोस्त जो हमें आखिरत और जजा व सज़ा के वाक़े होने में शुबा करते हैं और शोरोगुल और लगवियात में मुबतला करके कुरान से दूर करते हैं। आज मुसलमानों के कुछ ख़ास मुकाम जाकर देखिए, आपको इस आयत की समझ आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, शर के गलबे के लिए अल्लाह के ये दुश्मन मिलजुल कर जिद्दोजहद करते हैं। आज हम खैर के गलबे के लिए मिलजुल कर मदद नहीं करते, तावन अल बिर व तकवा नहीं होता। ये बहुत बड़ी वजूहत है आज इस किताब से दूरी की। और काफिर लोग कहेंगे, अब सोचिए जहन्नुम में जाने के बाद कितना गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर जिनकी वजह से ये भटके। वकाल अल्लज़ीना कफरू रब्बना अरिना अल्लज़ीना अज़ल्लाना मिनल जिन्नी वल इंस। और काफिर कहेंगे, हमारे रब हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया था, ताकि हम इन्हें अपने कदमों तले डाल दें, ताकि वो जहन्नुम में सबसे नीचे सख्त अजाब में हो जाएं। वाकई जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है और फिर इसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी गम और अंदेशा न करो, बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। फरिश्तों की आमद। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी रहेंगे, ये है अर्शियों का फर्शियों से ताल्लुक। जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो, सब कुछ तुम्हारे लिए इस जन्नत में मौजूद है। वो लोग जो दुनिया को जन्नत बनाते रहे, उनको ये खुशखबरियां नहीं मिलेंगी। गफूर रहीम माबूद की तरफ से ये सब कुछ बतौर मेहमानी के हैं। अल्लाह अकबर। इस आयत को हम देखेंगे, आगे भी आएगी सूरत अलअहकाफ में, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि हमारी दोस्ती किनसे है। बेहतरीन दोस्त अल्लाह, रसूल, कुरान, फरिश्ते और अहले ईमान। बदतरीन दोस्त बुरे लोग, शैतान, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, टीवी का गलत इस्तेमाल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पे गलत काम करने वाले बदतरीन दोस्त हैं। हम देख लें हम किसके साथ हैं। सवाल पैदा होता है, बुरी सोहबत के असरात क्या दिखेंगे? तो आप देखिए कि अबू तालिब बिल्कुल ईमान लाने के करीब थे, लेकिन इनके दोस्तों ने आर्त दिलाई तो कलमे के बगैर दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी ने वक्ते मर्ग अबू तालिब को कलमा पढ़ने को कहा था, लेकिन वह अबू जाहल और अब्दुल्ला बिन उमैया के रोकने और आर्त दिलाने पर वो महरूम रह गए। इसी तरह हजरत अली पर अच्छी सोहबत के क्या असरात हुए? एक जंग में एक दुश्मन खुदा की गर्दन उड़ाने लगे तो इसने आप पर थूक दिया, तो आपने ये कहकर इसे छोड़ दिया कि अब मेरा ये अमल खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगा बल्कि ज़ाती बदले के लिए होगा। तो अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी दोस्तियाँ करने वाला बनाए और फरिश्तों की ये दुआएं लेने वाला बनाए। ये फरिश्ते हमारे लिए इस्तकामत की दुआएं करते हैं, हम ना हों उन जगहों पर तो जाके ढूंढते हैं, बीमार हों तो तीमारदारी करते हैं। आपने फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें हैं, आज भी लॉकडाउन में मस्जिदें खाली हैं, लेकिन मेरा यकीन है कुछ लोगों को फरिश्ते वहाँ जाकर ढूंढते होंगे। वमन अहसनु कौला मिम्मन दअ इलल्लाही। और इससे ज़्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं यकीनन मुसलमानों में से हूँ। नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। लिख लीजिए दुश्मनों को दोस्त बनाने वाला गुर है इस आयत में। तो इस आयत में बहुत ही प्यारे अंदाज से अच्छे दोस्त की पहचान कराई गई। पहली बात है कि अहसन कौल, नरम बात करने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, अल्लाह तआला के लिए खालिस अमल करने वाला, फिरका वारियत की नफी करके खुद को मुसलमान कहने वाला, बुराई का जवाब भलाई से देने वाला। सही मुस्लिम की रिवायत है 166। आपने फरमाया जिनमें तीन बातें होंगी वो ईमान का मजा पाएगा। जो शख्स किसी से दोस्ती रखे फिर इससे दोस्ती ना रखता हो मगर अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के लिए अल्लाह का नेक बंदा समझकर इससे दोस्ती करें, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती रखे और दूसरे सब लोगों से या उन चीज़ों से ज़्यादा, और जो आग में डाला जाना पसंद करे मगर फिर कुफर इख्तियार करना पसंद न करे जबकि अल्लाह ने इसको कुफर से निजात दी। तो अल्लाह हमें ईमान का ये जायका चखने वाला बना दे। और ये बात इन्हें नसीब होती है जो सब्र करें। अल्लाह हमें जो हज़्न अजीम वाला बना दे। और इससे सिवाय बड़े नसीबे वालों के कोई नहीं पा सकता। और अगर अल्लाह की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत बड़ा है सुनने और जानने वाला। दावत इल्लाह के रास्ते में जहाँ दोस्त आपकी कदर ना करें तो ये दुआएं मांग लें। और दिन रात और सूरज चांद भी इसकी निशानियों में से हैं। तुम सूरज को सजदा ना करो ना चांद को, बल्कि सजदा करो उस अल्लाह के लिए जिसने सबको पैदा किया और उसी ने और जिसने सबको पैदा किया। अगर तुम्हें इसी की इबादत करनी है तो फिर भी अगर ये किब्र और गरूर करें तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नज़दीक हैं, वो तो दिन रात अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं और किसी वक्त भी नहीं उकताते। कहीं आप तो नहीं उकता गए? और इस अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तू ज़मीन को दबी दबाई देखता है, फिर जब हम इस पर मीह बरसाते हैं तो वही तरोताज़ा होकर उभरने लगती है। जिसने इसे ज़िंदा किया वही यकीनी तौर पर मुर्दों को भी ज़िंदा करने वाला है, बेशक वो हर हर चीज़ पर कादिर है। बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं, यानी टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हैं आयतों को सुनकर, और वो कुछ हमसे मख्फी नहीं बतलाओ तो जो आँख में डाला चाहे वो अच्छा है, या वो जो अमन अमान के साथ क़यामत के दिन आए, तुम जो चाहो करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बावजूद इससे कुफर किया, वो भी हमसे पोशीदा नहीं। ये बड़ी बावक़त किताब है, अल्लाह इस किताब की वक़्त हमें दिला दे, इसकी कदर का एहसास दिला दे। जिसके पास बातिल फटक भी नहीं सकता, ना इसके आगे से ना इसके पीछे से, यह है नाजिल करदा हिकमतों वाले खूबियों वाले अल्लाह ताला की तरफ से। आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों से भी कहा गया। यकीनन आपका रब माफ़ी वाला और दर्दनाक अजाब वाला है। और अगर हम इसे इस अजमी ज़ुबान का कुरान बनाते तो कहते इसकी आयतें साफ साफ बयान क्यों नहीं की गई? जैसे आज हम मुसलमान कहते हैं कुरान तो समझ ही नहीं आता, तो जवाब है कि तर्जुमा याद कीजिए। ये क्या कि अजमी किताब और आप अरबी रसूल? आप कह दीजिए ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में तो बहरापन और बोझ है, और ये इन पर अंधापन है। ये वो लोग हैं जो किसी बहुत दूर दराज जगह से पुकारे जा रहे हैं, कान बड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती इनको। यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, सो इसमें भी इख्तलाफ किया गया, और अगर ये बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले से मुकर्रर हो चुकी है तो इनके दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता। ये लोग तो इसके बारे में सख्त बेचैन करने वाले शक में हैं। जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने ही नफ़े के लिए करेगा, और जो बुरा काम करेगा इसका वबाल भी इसी पर है। और आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह ताला आपको मुझे जुल्म से बचाए। तो ये था पारा नंबर 24। क्या सीखा? हामीम सजदा की आखिरी आयतों से कुरान आ जाने के बाद हिदायत ना पा सकने वाले बदनसीब हैं। इंसान अपना दुश्मन आप है, मखलूक को नहीं खालिक को सजदा करो। अजाब व सवाब ना होता तो अमल भी ना होता। कुरान को ठुकराने वाले शक्की लोग हैं। सुनहरे हरूफ, जेम्स, फरिश्ते हमारे दोस्त बने, क्या हम इसके काबिल हैं? बुरी दोस्ती और बुरी सोहबत एक फितना है, इससे बचना। अच्छा दोस्त एक नेमत और इस्तकामत फिर दीन में मुआविन होता है। अच्छे लोगों को दोस्त बनाना है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी है, इसलिए सारे मामले उसके हाथ में देने हैं। शिर्क की वजह अल्लाह की नाकदरी है, इससे बचना है। और हमारे ही आज़ार, हमारी खालें यानी स्किन एंड हमारे हाथ पाँव हमारे खिलाफ गवाही देंगे, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच के करना है। और इस्तकामत फिर दीन और इखलास इख्तियार करना है, और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला में फरिश्तों की दोस्तियाँ और उनकी दुआएं नसीब फरमाए। हल भी ले लीजिए फितने का। फितना क्या था? अच्छी दोस्तियों की नाकदरी, अच्छी सोहबत ईमान के रिश्ते की नाकदरी। तो जवाब क्या है कि बुरी दोस्ती और सोहबत एक फितना है। इसका एहसास करते हुए अपने दोस्तों और ख़ुद का जायज़ा लेना है, अपनी दोस्ती का मेयार मुकर्रर करना है, और दोस्त बनाते हुए इसका अखलाक, तकवा, किरदार और दीनदारी देखनी है। इस बात को याद रखना है कि मोहब्बत किसी से सिर्फ अल्लाह के लिए, और बुग़्ज़ भी सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। दोस्ती की अहमियत समझनी है, क्योंकि बुरा दोस्त इंसान को बुरे माहौल में मुबतला करते हुए अकायद के खलल तक में मुबतला कर देता है, यानी अकायद बिगड़ जाते हैं बुरे दोस्तों में बैठकर। खास तौर पे अपने बच्चों पे नज़र रखिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आला अखलाक और किरदार अपनाना है, ताकि हमें भी अच्छे लोग अपना दोस्त बनाएं। अच्छे काम करने हैं ताकि फरिश्ते हमारे लिए दुनिया और आखिरत में दुआएं भी करें और हमारे दोस्त बने। रोज़े क़यामत आज़ा की गवाही के पेश नज़र शऊर से ज़िंदगी गुजारनी है, और यकीन रखना है कि बुरी दोस्ती से तन्हाई और ज़िक्र इलाही बेहतर है। बुरे दोस्तों की सोहबत छोड़नी है और सालेहीन से दोस्ती करनी है। अपनी औलादों के दोस्त और उनके माहौल पर नज़र रखनी है। इनकी तरबियत इस्लामी असूलों के मुताबिक करनी है, और दुनिया और आखिरत में अच्छे दोस्तों और सोहबत सालेहीन के लिए दुआएं करनी है, और इस बात की तमन्ना रखनी है कि अल्लाह मुझे दूसरों के हक़ में एक बेहतरीन दोस्त बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।